Welcome. You are listening to the Bitecast by Pakistan Institute of Development Economics, PIDE, the premier think tank of Pakistan in research, public policy and economics.
Sari guftugu is waqt to ye hai ki kis party ko vote diya jaye, kis shakhs ko vote diya jaye. TV bhara hua hai is cheez se. Lekin kahin par koi mujhe manshoor nahi dikhai deta. Suna hai ki abhi PTI walon ne apne website pe dala hua hai. Lekin wo website maine पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है. दूसरे की पार्टीज का तो कोई मंशूर शायद है ही नहीं, अगर है तो हम तक तो नहीं पहुंचा. मुझे ये पता है कि यूके में, अमेरिका में और इंडिया में क्या मंशूर है पार्टीज का, लेकिन इधर का नहीं पता चल सका. तो ये इस बात की दलील है कि यहाँ सिर्फ शख्सियात और पार्टियों की बुनियाद पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन कोई इश्यूज पर नहीं बात कर रहा. तो इस सिलसिले में आज हमने डॉक्टर नदीमुल हक को दावत दी है. मारूफ शख्सियत हैं इस्लामाबाद के, लिहाजा तारुफ के मोहताज नहीं. वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से PhD हैं और IMF से मुंसलिक रहे हैं बहुत साल. कितने साल?
30 साल
IMF के साथ. और IMF के साथ तो पाकिस्तान का बहुत ही करीबी रिश्ता है. खैर, तो आज संजीदा मौजूदात पर हमारी बात होगी. इन्होंने बतौर वाइस चांसलर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये मैनिफेस्टो तैयार किया है जो बड़ा तफसीली है और इसमें नुस्खे कोई 1000 के करीब होंगे. तो चलिए बात.
250
अच्छा, मैंने तो उससे ज्यादा ही गिने क्योंकि हर फॉर्मूले में से एक शाख निकलती है, तो गिनते चले जाएं तो 1000 से भी ऊपर हो जाएंगे. तो बहरहाल पहले हम जो आपने काम किया है इसका इहाता करते हैं.
ये हमारी 4 साल के रिसर्च का जुज है. वी हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स ऑन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, आपको बता दूं 70 साल या 65-year-old इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ इकॉनमी की रिसर्च करता है और डेवलपमेंट की. 22 families यहीं से निकला था. बांग्लादेश की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड की रिसर्च इस पर बांग्लादेश में यहीं से निकली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकली हैं. तो हमने उसके 4 साल से कोशिश करें कि इस मुल्क डूब क्यों रहा है. बड़ी सिंपल बात है, आप सबको पता है मुल्क तो डूब गया है. डूबने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका कर्जा इतना है जो आपके अगले 2 पुश्ते नहीं चुका सकेंगे. आपका कर्जा तकरीबन इस वक्त ऑलमोस्ट 80% ऑफ GDP है और कुछ कर्जा छुपा हुआ है, जो आपका बिजली का कर्जा छुपा हुआ है, जो आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज कर्जा छुपा हुआ है, जो आपका कमोडिटीज खर्चा छुपा हुआ है. तो अगर आप सारे छुपे हुए खर्चे सब कुछ मिलाएं, जो आपके डेट्स बिल्डअप हुए सुई गैस के ये वो, तो आपका तकरीबन 100% ऑफ GDP आपका कर्जा है. आप बताइए जिस आदमी की आमदन इतनी हो कि उसका डेट उससे बड़ा हो तो फिर वो क्या करेगा? तो फेल हो गया ना. तो आपका मुल्क तो बड़ा है क्या. अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. SIFC भाग रही है पूरी दुनिया में, इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहता. तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि आप लोग भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, सब डॉलर की तलाश में. मैं भी डॉलर की तलाश में हूँ. मैं सब आपको कहता हूँ डॉलर ढूंढे, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे हम. तीसरी चीज़ हमने देखी है कि यहाँ इन्वेस्ट करने भी नहीं देते. आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जनाब गालियाँ देंगे, आपको रुकावटें डालेंगे, आपको इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे. चौथी चीज़ हम देखते हैं एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है. उसके ऊपर मज़ीद हम बात कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए. हम देख रहे थे जब इलेक्शन हो रही है कि मैनिफेस्टो ही कोई नहीं बनता, तो हमने कहा बड़ा अच्छा टाइम आया, हम समराइज़ कर दें हम क्या सोचते हैं और फिर आगे बात करेंगे. तो दिस इज़ नॉट ओनली एक मैनिफेस्टो, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ रिसर्च एजेंडा. बिकॉज परवेज साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात कही कि जी इसमें हर एक बात में से नई चीज़ निकलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीड फर्दर रिसर्च. तो दिस इज़ अ होल न्यू रिसर्च एजेंडा दैट वी आर ट्राइंग टू पुट आउट. द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, वी वॉन्टेड टू पुट अ मैनिफेस्टो ऑन द टेबल ताकि ये लोग देख तो सकें कि क्या करना चाहिए. थिंक टैंक्स की मेरा ख्याल यूनिवर्सिटीज़ की जो होनी चाहिए रेज़ ऑन डेथ, कि वो हमें चेंज आइडियाज़ दें. अगर वो चेंज आइडियाज नहीं देते तो फिर फायदा क्या यूनिवर्सिटीज का. सो दैट्स व्हाट वी द रोल दैट वी आर ट्राइंग टू फुलफिल. तो वी कॉल्ड इट द पाइड मैनिफेस्टो. हमने कहा ये शायद कॉपी कर लें, कुछ चीज़ें नहीं है पर कुछ ज़्यादा नहीं इन्होंने. ठीक है जी, तो ये एक हमारा है. आई थिंक लेट्स सी. पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास पोलिटिकल सॉरी तो ये छोड़ दें, आपने कभी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई नहीं. प्लीज़, आपने IMF की बात की, पर ऐसा वी हैड 24 IMF प्रोग्राम्स. 24 IMF programs mean each IMF program lasts about 1 to 5 years, depending on how well you perform and whatever. Divide 75 by 24. Imagine you've never been free of IMF.
ये थोड़ा सा distracting है. ये तो
बंद कर दें. बंद कर दें. ये बहुत लंबा है. I don't want to go into it. ठीक है जी. Okay. अच्छा जी. Point here, we've had 25 IMF programs. That means that we've always been in the IMF. अब IMF क्या है? किसी को पता IMF क्या है जी? बट वॉट इज इट इन रियलिटी? बनाया क्यों गया था? ब्रेटन वुड्स में क्यों बनाया गया था? क्यों जी?
नदीम, जिस तरह से इनकी आवाज आएगी नहीं.
ओह शिट. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके. सॉरी सॉरी सॉरी.
IMF का बेसिक पर्पज ये था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया जाए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को सस्टेन किया जाए.
बिल्कुल सही. पर असल जो चीज ना, जो समझने वाली बात है, इट्स आल्सो कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. व्हाट डज दैट मीन? कि जब आपके पास कुछ ना रहे, जब आपका बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल, इसको मैं कहता हूँ इंटरनेशनल इमरजेंसी वार्ड. इट्स द इमरजेंसी वार्ड फॉर द कंट्रीज. जब बिल्कुल बैठ गए हैं तो आप IMF के पास जाते हैं. यू डोंट गो टू IMF अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस IMF के पास नहीं आप जाते हैं.
ईडी एम्बुलेंस.
हां जी बिल्कुल, ईडी एम्बुलेंस है. टोटली ईडी एम्बुलेंस है. अब मुझे बताइए, किसी को शर्म आ रही है इस पर? इस मुल्क में किसी को शर्म नहीं आती. दिस इज हु वी आर. अब बताइए वजह क्या है इसकी? जो हम तहकीक करके निकाल रहे हैं, वजह यह है बड़ी सिंपल कि आपने एक बिल्डिंग इकोनॉमी की जो बिल्डिंग बनाई है, जो अब बोल रहे हैं लोग कि हमने पैसे दे देने, हमने आपको मराद दे देनी, हमने आपको हेल्थ फ्री दे देनी, हमने आपको गाड़ी फ्री दे देनी, हमने आपको 300 यूनिट बिजली फ्री कर देनी. क्योंकि आप भिखारी हैं. आर यू पीपल बेगर्स? बट देन दिस इज द वे दे आर ट्रीटिंग यू. ये क्या निज़ाम है? द सेम निज़ाम दैट लॉर्ड मैकॉले ब्रॉट हियर, सेइंग के जी इन लोगों को, आपको याद है गोरे को क्या कहते थे? गोरे को हम माई बाप कहते थे. और गोरा माई बाप किस तरह कहलवाता था अपने आप को? बिकॉज हमें वो चीज़ें देता था, ज़मीन दे दी, ये दे दी. हमारा निज़ाम वही चल रहा है. माई बाप पला कि ये हमें चीज़ें देंगे, ज़मीन भी देंगे, घर भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे. तो यार फिर हम क्या करेंगे? तो जो मैं बार बार कहता हूँ, व्हाट आर वी? आर वी अ सोशलिस्ट कंट्री? आर वी अ कैपिटलिस्ट कंट्री? वी डोंट नो. वी आर अ कन्फ्यूज कंट्री. इनफैक्ट वी आर द रेमिनेंट ऑफ द सोवियत यूनियन. वी फिक्स प्राइसेस, वी अलॉट थिंग्स टू पीपल, वी डोंट लेट मार्केट्स वर्क. ये हमारा मैनिफेस्टो, सिंपल. इसमें हमने 10 चैप्टर दिए हैं. मैं 10 चैप्टर में क्विकली रन थ्रू कर दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पहला चैप्टर हमारा है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आई? इक्तदार की जंग में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती. एक दूसरे को गालियां देने से नहीं आ सकती. माजी की तरफ देखने को नहीं आ सकती. व्हेन विल वी हैव लीडर्स हु टॉक अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर में सिर्फ यही होता है हम आपको चीज़ें देंगे. कैसे देंगे भाई? मैंने आपको बता दिया, पैसे तो आपको आता है नहीं. फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के पास इस वक्त जो पैसे होते हैं, जैसे आपकी जेब में, मेरी जेब में बटुआ है, तो पैसे हैं ना आपकी जेब में बटुआ होगा. आपका बैंक बैलेंस, आपके रिजर्व्स हैं कि नहीं? हमारे बैंक बैलेंस क्या है? हमारे मुश्किल से 10 बिलियन डॉलर है. तो भी मांगा हुआ बिल्कुल. तो हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है, खाली बटुआ खाली, और हम आपको पैसे चीज़ें दे रहे हैं. मतलब इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि बटुआ खाली है भाई, बैंक बैलेंस भी खाली है भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है. एक्सचेंज रेट रोक के बैठे हुए हैं, एक्सचेंज रेट जाने नहीं दे रहे, पैसे हमारी एक्सपोर्ट हो नहीं रही, और ये लोग कह रहे हैं हम आपको चीज़ें देंगे. और ये लोग अपने मैनिफेस्टो भी दे रहे हैं, सिर्फ इकतदार की जंग है. फिर मियाँ बीवी बहन भाई समदी शमदी सब आ जाते हैं बीच में. तो हमने कहा पहली चीज़ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट नीड्स अमेंडमेंट. मैं ये नहीं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दो, मैं ये नहीं कह रहा मार्शल लॉ लेकर. एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़े वो बाइनरीज बने हुए हैं कि मार्शल लॉ होगा या ये होगा या ये होगा वो होगा. नहीं, द वर्ल्ड इज मोर कॉम्प्लेक्स इन अ सिंपल बाइनरी. द वर्ल्ड रिक्वायर्स अ कंप्लीट सिस्टम, अ वेल डिफाइंड सिस्टम. आई एम श्योर यू अप्रिशिएट दैट. ठीक है ना जी. वी नीड अ वेल डिफाइंड सिस्टम. वी डोंट हैव अ कंट्री, वी डोंट हैव अ सिस्टम एंड वी वॉन्ट टू गो टू गैट इन अ बिग वे. फॉर एग्जाम्पल हमारी इलेक्शन जो है, हमारी इलेक्शन में अली चीमा ने लंदन शो किया हुआ है, हमने यहाँ शो किया हुआ है कि जी 200 फैमिलीज हैं जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, आप और मैं, आप में से कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता क्योंकि वो 200 फैमिली में जद्दी पुश्ती वो उनकी है चीज़ें, विच वॉज कॉल्ड इन इंग्लैंड इन दी 1830s रॉटन बरा. वी बेसिकली गॉट रॉटन बरास. ये इनकी सीटें पक्की हैं, अब इनको आप क्या करेंगे? सो वी हैव टू चेंज द रूल्स. फिर कैंपेन फाइनेंस के रूल्स कोई नहीं है. कैंपेन फाइनेंस अब आपने देखा था कल, वो जनाब दो तीन दिन बल्कि हफ्ते से कर रहे हैं, वो पैसे नोट फेंक रहे हैं इन द मिडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन, दे थ्रोइंग आउट नोट्स, आर दे नो लिमिट्स. फिर एक और चीज़ है कि कैंपेन उनका क्या है कि जी हम जलसे करेंगे. जलसे मीन्स वन वे डायलॉग, आप बोलेंगे और पीछे कराए के नीचे कराए के लोग खड़े होंगे. देर आर नो डिबेट्स. बिलावल ने चैलेंज किया डिबेट पर, वो कहते हैं हम नहीं डिबेट कर सकते. वहाँ कास्ट सिस्टम आ गया कि हम बहुत बड़े हैं तुम बहुत छोटे, हम डिबेट नहीं कर सकते, उम्र बड़ी है तो कास्ट सिस्टम आ गया, वी डिबेट क्यों नहीं करते. तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, वी नीड टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम. अच्छा एक और चीज़ है, ये आपने जो देखा होगा कि हमारे पास इस वक्त पता नहीं किसी को पता है कितनी पार्टीज हैं हमारे पास, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एनी आइडिया? 175 पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाई डू वी हैव 175 पॉलिटिकल पार्टीज? शेख रशीद इज वन मैन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, देयर आर सो मेनी वन मैन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है जी. व्हाई कांट वी हैव क्लियर पार्टी की डेफिनेशन? हमारी पार्टी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ इज के 2000 मेंबर्स होने चाहिए, वो भी वेरीफाइड नहीं. तो टुडे यू एंड आई कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, तो कैन वी नॉट हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? वी आर सजेस्टिंग 5000 तो आपके, 50000 तो आपके मेंबर्स होना, 50000 मेंबर आपके बाकायदा रजिस्टर्ड विद CNIC हों. फिर इस किस्म की बहुत बातें हैं, इलेक्शन जो है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इलेक्शन में 50% नहीं आते जैसे फ्रेंच सिस्टम है, आप नई इलेक्शन करवाएं, ठीक है, या आप रैंक चॉइस करवाएं, देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग. फिर एक और चीज़ है, ये MNA बनते किस लिए, मिनिस्टर सॉरी, कि किस लिए इलेक्शन लड़ते हैं? देन ये कहते हैं हमने लेजिस्लेचर में बैठना है, पार्लियामेंट में बैठना है, पर इनका असली मकसद पार्लियामेंट में बैठना नहीं होता, तो शुरू ही झूठ से होते हैं. इनका असली मकसद मिनिस्टर बनना होता है, दूसरा मकसद होता है कि हम PSTP के पैसे खर्चे. ये दोनों बातें इलेक्शन पर नहीं लड़ते हैं. फिर पार्लियामेंट खाली हो जाता है, फिर ये मिनिस्टर बन जाते, तो हम कहते हैं PSTP ख़त्म करो और इनका वो नहीं हम, और ये बिकॉज इनके पास PSTP होते लोकल गवर्नमेंट नहीं बनने देते, तो वी वॉन्ट देम टू एंड द PSTP इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी वॉन्ट देम टू लीव द PSTP अलोन. पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में जाएँ, बैठें, अपनी लॉ मेकिंग करें. पार्लियामेंट में ये 30 दिन आते हैं साल में, एक दिन का 1.5-2 करोड़ का खर्चा है, पर 30 दिन आते हैं, तो यार क्या तमाशा है, ठीक है. आप मुझे हायर करते हैं तो आई हैव टू बी देयर एवरी डे, इनको नहीं होना होता, तो व्हाट यू वांट. फिर हम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो अग्री और डिसअग्री, हमारी कोई बात से अग्री ना करें, बट एटली हम तो सिर्फ कहते हैं डिबेट करें. फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कोई 100-150 मुल्क है जिनमें टर्म लिमिट्स हैं ऑफ वेरियस काइंड, को प्रेसिडेंट की, को फलाने की, को फलाने की टर्म. हम तो कहते हैं टर्म लिमिट्स पूरे पार्लियामेंट पे लगाओ, मीनिंग 2 दफ़ा ज़्यादा कोई नहीं आ सकता. देखें जी, अगर कोई आपके वाइस चांसलर आता है, एक दो टर्म्स ही करता है ना, यहाँ ये 10 बारी क्यों आ सकते हैं? तो 2 टर्म्स करें घर जाए, कोई और करें यार, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, और बड़ी काम करने को, हम नहीं कहते घर बैठे और बड़े काम है. फिर हम कहते हैं फैमिली लिमिट हो, फिर वाई शुड वन फैमिली पुट 7 पीपल इन द कैबिनेट? ऑब्वियसली अगर 7 बंदे कैबिनेट बैठे हो तो उन्होंने फिर एक साथ वोट ही करना है ना, अपने इंटरेस्ट ही देख करना है. व्हाई कांट वी हैव फैमिली लिमिट्स? ये दुनिया में प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हुई हुई हैं, सो व्हाई कांट वी थिंक ऑफ दैट? तो इस किस्म की बहुत हमने बातें की
जी, लेकिन ये एक ला हासिल बहस तो नहीं है, इसलिए कि शुरू दिन से ऐसा ही हुआ ना. 1947 से लेकर आप 1956 तक देखें तो 7 प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए, जिसका मतलब ये कि कुछ ने साल गुजारा, कुछ ने कुछ महीने, कुछ ने 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई तसलसल तो रहा नहीं. फिर भी हमने ये देखा कि जो भी आता है निज़ाम तो वैसे ही चलता है जैसा उससे पहले था और जो जैसा उसके बाद है. शुरू में तो ऐसे था ना कि कोल्ड वॉर की वजह से हमें बड़े फ़ायदे हुए, अमेरिका ने ख़जाने के मुँह खोल दिए थे हमारे लिए. फिर जब सोवियत यूनियन यहाँ अफ़गानिस्तान पर हमलावर हुआ तब भी हमारा बहुत फ़ायदा हुआ, और अब नुकसान ये हो गया अमेरिका तालिबान के जीतने का नुकसान हमें बहुत बड़ा हुआ. अब वो ऊपर से जो डॉलर बरसाए जा रहे थे अब तो नहीं आ रहे हैं। सियासी निज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बैरूनी हालात बदलने से फ़र्क पड़ा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
हेयर मैं ये बात कह रहा हूँ कि यू आर इन टोटल अग्रीमेंट विद द जनरल्स। एक जनरल मेरे पास आया था, उसने अगले दिन यही बात कही थी मुझे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ अमरीका को काबू कर लो। बात यह है, आप अगर घर का अपना माहौल नहीं ठीक करना चाहते, घर नहीं ठीक बनाना चाहते, बड़ी अच्छी बात है अगर शुगर डैडी हो। शुगर डैडी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर शुगर डैडी मिल जाए आराम से बैठ, शुगर डैडी का मतलब पता है क्या? बाप हो जो आपको पैसे खिलाता रहे, मैं जनाब कौम का लाडला हूँ, बाप का लाडला हूँ, बाप मुझे खिलाते। अमरीका के आप लाड ले माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इसराइल आप बन जाए ना, पता नहीं आप इसराइल बन सकते कि नहीं बन सकते, मेरा नहीं ख्याल।
ना ना ना, इसराइल आप बिल्कुल नहीं बन सकते। वहाँ जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उन्होंने अरब दुनिया को जेल किया हुआ है। अमरीका की इमदाद तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी जो अपनी इनर स्ट्रेंथ है ना, जिसकी वजह से 500 मिलियन
अरबों को उन्होंने जो कहते हैं थले लगाया हुआ।
वैसे उनकी जो एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है ना, बिकॉज अमरीका उनको शुगर डैडी वैसे नहीं बना हुआ, दे एक्चुअली लॉबी अमेरिका, बिकॉज दे हैव द, ये हम भूल जाते हैं, दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन अमेरिका, नॉट इन इज़राइल। ऑल द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैव ह्यूज नंबर ऑफ ज्यूइश प्रोफेसर्स। हेज फंड्स ओन बाय बिल एक्मन ने जो बेड़ा गर्क किया अरबों का अकेले ने खड़े होके ट्विटर पर, और जो उसने हार्वर्ड, बिल एक्मन ने हार्वर्ड और पेंसिल्वेनिया के प्रेजिडेंट्स निकलवा दिए, ठीक है हाँ जी, MIT का भी है ना, बिल एक्मन ने निकलवाए। वाई? ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज नॉट अ फूल, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एंड हाउ इज ही डन इट? डन इट हिमसेल्फ, एंड वो यहूदी लॉबी है सारी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेट्स रिटर्न टू दिस। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी इसको सोचे। एक और चीज़ जो फैमिली लिमिट्स की बात बहुत जरूरी है, फिर वी वॉन्ट क्लियर सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड ये चीज़ कि मिनिस्टर कम हो और पार्लियामेंट सेपरेट हो। अब दीज आर प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कैसे होगी कैसे नहीं होगी, अगर हमने अपना सिस्टम क्लीन अप करना है। ये तो जितना मर्जी अमरीका पैसे दे दे, ये इख्तदार की जंग चलती रहेगी। ओए चोर चोर, ओए चोर चोर, ओए चलो रियासत मदीना बनाओ, माजी की बातें करो, पीछे की बातें करो, आगे की बात ही ना करो। ठीक है, तो लेट्स डू इट, कीप डूइंग इट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम दैट्स वन। द सेकेंड चेंज दैट वी वॉन्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि जी आपकी जो सिस्टम है, आपने जुडिशरी सिविल सर्विस 1860 की रखी हुई है, आपने लीगल सिस्टम 1860 का रखा हुआ है, आई एम यूजिंग द टर्म रफली, बट रफली अराउंड देयर आपके बड़े चेंजेस आए थे, उसके बाद आपने चेंज ही नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज, आपकी पॉलिसी मेकिंग होती को नहीं, सब कुछ IMF बनाता है, आपकी जो पॉलिसीज आती है वर्ल्ड बैंक बनाता है, अब तो पॉलिसीज बनाते नहीं। बिजली का निज़ाम जो चेंज किया वर्ल्ड बैंक ने किया, BISP बनाई वर्ल्ड बैंक ने बनाई, इसी तरह एक्सेस टू जस्टिस आया तो ADB ने किया, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये बता देगी आपको कितने वो लोग कर रहे हैं काम, क्यों जी, तो सारे वो काम करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिकॉज हमारे सिविल सर्वेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। हमारे सिविल सर्वेंट, कल जी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास आए जी आपके प्रोबेशनर्स जिन्होंने अभी नया इम्तिहान पास किया, कल आए वो प्लानिंग हमारे पास पाइड के लिए, हम आपसे मिलेंगे बातें करेंगे ये वो। मैंने नोटिस किया कि 300 बच्चे आ रहे हैं बसों में, ये वो अर्ली 20s या मिड 20s में, सामने एक पुलिस की ह्यूज डाला, पीछे पुलिस का डाला, आपने अभी से उनका दिमाग ख़राब कर दिया। उनके प्रोफेसर मुझे कह रहे थे, सर इनका तो दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो गया, ये तो ऑलरेडी टॉप पे। फिर मैंने कल ट्विटर पे देखा, एक खातून छोटी सी बच्ची होगी 25-30 साल, उसने जनाब लगाया हुआ ट्विटर पे ट्वीट, आप सबने देखा होगा, कि मैं जा रही थी, मुझे पुलिस वाले ने रोका, मेरे पास सरकारी गाड़ी थी, उसने कहा जी आप क्या है, कहती जी मैं तो सरकारी अफसर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर उसके पास गाड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर मोस्ट ऑफिसर इन द कंट्री, हर किसी के पास गाड़ी है, पूरी अमरीका बतानी की गवर्नमेंट के पास 83 कार्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट अलोन है 300,000 का समथिंग लाइक दैट। अभी आपने डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर बैंकक्रप्ट, यू बॉट 3 billion rupees वर्थ ऑफ कार्स, व्हाई? टू प्लीज दीज पीपल। फिर हमने आज ही हिसाब लगाया है इस्लामाबाद में, गेस कितने सरकारी घर हैं, किसी मुझे भूल भी गया कितने, आई कैन टेल यू कितने हैं, सॉरी एक चीज़, 2,000 acres के सरकारी घर हैं। इस्लामाबाद की ज़मीन कितने की है जी, ये यहाँ ज़मीन कितने की होगी, किसी को पता है? नहीं पता तो बताता हूँ, ज़मीन.com क्या कहता है, ज़मीन.com कहता है आपकी ज़मीन यहाँ जो है 15-20 crore की है, आपके पास 2000 एकड़ इस्लामाबाद में सरकारी घर है, लाहौर में ज़्यादा है, पूरे शहर पूरे मुल्क सारे पर मुल्क, ये आपने पैसा ब्लॉक किया हुआ किस लिए कि सरकारी याशियों मैरिट के सामने क्या है, मैरिट के सामने मिनिस्टरों के घर है, हम इसका हिसाब लगाते हैं, ये आपके तेल शेल सोने से ज़्यादा दौलत है आपने ज़ाया की हुई है। हत्ता कि ये भी है कि अब इनकी देखा देखी आपके प्रोफेसरों ने भी घर बनाने शुरू कर दिया, आपको पता कैदम यूनिवर्सिटी में कितने घर है, हमने हिसाब लगा लिया, आपको पता मुल्तान में कितने घर है, इस यूनिवर्सिटी में भागलपुर यूनिवर्सिटी में कितने घर है, ये तमाशा बना हुआ है। तो आप डेवलपमेंट को बजट में से घर बनवाते हैं या चीजें बनाते हैं मुझे समझ नहीं आती। तो हम कह रहे हैं जी मॉडर्न निज़ाम की तरफ तो आए, एक और चीज़ मॉडर्न निज़ाम की तरफ जाए। अच्छा जी शहर आपकी तीसरा हमारा चैप्टर है, शहर आपकी दौलत होती है, आपका शहर कौन चलाता है कैसे चलता है, डीसी या चेयरमैन सीडीए चेयरमैन एलडीए ये शहर चला रहे हैं। दीज सिटीज आर नॉट लार्जर देन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज हाफ द साइज ऑफ लाहौर, 1/3 द साइज ऑफ कराची,
पॉपुलेशन साइज की बात,
पॉपुलेशन वाइज नॉट फिजिकल, पॉपुलेशन
डेंसिटी के हवाले से,
पॉपुलेशन वाइज जस्ट प्योर पॉपुलेशन, न्यूयॉर्क इज अबाउट 7.58 मिलियन, लाहौर इज अबाउट 15 मिलियन, ठीक है, कराची इज अबाउट 20 मिलियन, लंडन इज अबाउट 8 मिलियन 9 मिलियन, ठीक है, हमारे वी गॉट सम ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप चले जाए फॉर एग्जाम्पल बॉस्टन का क्या साइज होगा, बॉस्टन इज प्रॉब्ली स्मॉलर देन इस्लामाबाद, बॉस्टन इज अबाउट 2-3 मिलियन, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज कि इतने बड़े बड़े शहर उनको चला कौन रहा है, डीसी निज़ाम कौन सा है आपका, वो जो 1860 का निज़ाम है कि डीसी साहब होंगे, और डीसी तो एक विलेज को चलाता था, नाउ इज रनिंग दिस ह्यूज सिटीज, एंड हु इज अ डीसी, ही इज अ 25-year-old kid अ 30-year-old kid हु हैड नो वर्क एक्सपीरियंस, ही कम्स देयर फॉर अ ईयर एंड देन ही गोस आउट समथिंग एल्स, देन ही बिकम चेयरमैन सीडीए एलडीए, और तमाशा आपने लगाया हुआ है। सो योर सिटीज ऑब्वियसली आर नॉट अप टू पोटेंशियल, नाउ लुक एट द लैक्स इन योर सिटी, आपको पता है यू हैव नो स्कूल्स इन योर सिटीज, व्हेन आई से स्कूल्स आई मीन प्लान्ड स्कूल्स, ऑल योर स्कूल्स 80% ऑफ योर स्कूल्स आर इन कोठीज, योर स्कूल्स आर इन बेडरूम्स इन बाथरूम्स, यार वेयर इज द प्लान्ड बिल्डिंग, फिर आप एजुकेशन को बड़ी तरजीह देते हैं, हम बड़ी एजुकेशन बड़ी तरजीह दे रहे हो, यार आपके स्कूल तो वहाँ है, देयर इज नो प्लेग्राउंड इन 80% ऑफ योर स्कूल्स, देयर इज नो प्लेग्राउंड, ठीक है, 80% ऑफ योर स्कूल्स, देयर इज नो लाइब्रेरी।
नदीम पहले यहाँ मॉडल स्कूल्स हुआ करते थे और बहुत अच्छे, बहुत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत उम्दा था, फिर जब प्राइवेट स्कूल्स बने तो उन क्योंकि उधर पढ़ाई बेहतर थी तो जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना शुरू किया, लिहाजा उधर जो पढ़ाई का मेयार था वो गिरता चला गया। अब तो ये हो रहा है कि जो नए सेक्टर बने इस्लामाबाद के, जैसा कि G10, 11, 12 आगे, उधर तो मॉडल स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं ही नहीं, उधर कोई खेल के मैदान नहीं है, पार्क्स भी कम हो गए हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो कम होती चली जा रही जैसे जैसे इस्लामाबाद फैलता चला जा रहा है।
ये हमारा चैप्टर 10 है, हमारा चैप्टर 10 इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं सॉरी बिल्डिंग अ कोहेसिव कम्युनिटी एंड सोसाइटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर 8 है। बात ये है जी कि ये शहर अगर आप चलाएंगे ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में रन बाय ग्रेड 20 ब्यूरोक्रेट्स हु वर ट्रेंड फॉर समथिंग एल्स, ये तो हैपन स्टांस है ना कि आप इधर उधर बदल लगा देते हैं। वेयर आर योर प्रोफेशनल टाउन मैनेजर्स जो दुनिया में हैं आजकल, योर टाउन प्लानर्स, वेयर आर योर टाउन प्लानर्स, योर टाउन प्लानर्स जो UET वगैरह में पढ़ाते हैं, दे कांट राइज अबव ग्रेड 18, उनकी हाईएस्ट पोस्ट इज ग्रेड 18 एंड दे रिपोर्ट टू द DC, और DC जो कहता है वो होगा। तो ये जो मसला पॉलिटिशन आपके सोचते हैं शहर क्या है, उनके लिए शहर एक ही चीज़ है जो हम बार बार लिखते रहते हैं, फॉर देम शहर इज फ्लाई ओवर एंड सिंगल फी कॉरिडोर, क्यों जी आप में से सब लोगों के पास गाड़ी है, एनीबडी विदाउट कार हियर, बस यू, तो हाउ डू यू ट्रैवल, अच्छा अब पॉइंट ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स आपने कितने बनाने हैं भाई, सिग्नल फ्री कॉरिडोर के नुकसान किसी को पता है, कोई फायदे पता है, किसी ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, मैं जब प्लानिंग कमीशन था मेरे पास आते थे MNA, मैं उनको नाराज़ कर मैं नहीं बना रहे, मेरे से लड़ते थे क्यों, मैंने कहा यार आपकी वैल्यू ऑफ टाइम कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ टाइम होगी तो मैं बनाऊंगा ना, देखिए ये सिंपल बात है, 10 रुपये जिसकी वैल्यू ऑफ टाइम उसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना के क्यों देना है, ठीक है, वो पेट्रोल फूंकता फिर रहा है और पेट्रोल फूंकते तो हमारी सेहत खराब होती है, तो ये भी मसला है। हाउसिंग सोसाइटी आप क्यों बनाते हैं? बिकॉज ये ब्यूरोक्रेट्स ने ये निज़ाम किया हुआ है। मुझे बताएं यहाँ दो स्टोरी के घर पड़े हैं, दो स्टोरी के घर क्यों हैं? मैं गया जी चीन गया, मैंने चीन में अभी जाके पूछा रिसेंटली, मैंने कहा जी मुझे घर दिखाओ जी, जैसे जी 11 ये आपके साथ वाले घर जो बने हुए ना दो स्टोरी वाले, वो हंस पड़े, वो कह यार ये कौन बनाता है, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं। पूरे चीन तुर्की में ऐसे घर नहीं आपको मिलेंगे, तो आप किस निज़ाम में रह रहे हैं? तो ये हम शहरों की बात कर रहे हैं कि शहरों को आज़ाद करो, दिस टाइज इन लोकल गवर्नमेंट, दिस टाइज इन योर एवरीथिंग टाइज इन, व्हेन यू थिंक अबाउट इट्स अ होल सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड थिंग, जैसे ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं, पॉलिटिशियन बात करते हैं, बस जी स्कूलिंग कर दो स्कूलिंग। भाई स्कूलिंग कैसे करोगे अगर आप प्ले ग्राउंड ही नहीं दे रहे? हमने हिसाब लगाया विद अ बिग सर्वे, 70% ऑफ योर बॉयज हैव नेवर सीन अ प्ले ग्राउंड, 100% of your girls have never seen a playground.
और पहले सड़कों पे खेला जा सकता था, अब तो सड़कें अब बिल्कुल उधर खेलना नामुमकिन है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा।
So this is the mess that we got. हमारा चौथा चैप्टर है, आप सोचेंगे हैरान होंगे कि हमने चौथा चैप्टर इस पे डाला, पहला नहीं डाला, बिकॉज सारे मेरे इकोनॉमिस्ट भाई पहले आपको आके ये बात करेंगे, हमने ये चौथा डाला फिस्कल मैनेजमेंट। और फिजिकल मैनेजमेंट जो हम एक चीज़ बाकी सारे आपके इकॉनमिक जितनी आप बोलते हैं उनसे हम बहुत फ़र्क बातें करेंगे, हम कहते हैं टैक्स लगाना बंद करो, इनफ ऑफ टैक्सेस, लोगों को काम करने दो। आप लोगों को काम नहीं करने देते, टैक्स टैक्स गेम चल रही है, यहाँ टैक्स बढ़ाए जाओ, टैक्स कितना टैक्स लगाना है भाई, जो लोग बेरोजगार हैं जिनके पास वो टैक्स क्या देंगे? सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या है जी कि बेसिक चीज़ें ये हैं कि पहले फिजिकल निज़ाम तो ठीक करो। हुकूमत फिजिकल मैनेजमेंट क्या होती है? हुकूमत का डिसिप्लिन होता है। रूल ऑफ लॉ क्या होती है? हुकूमत का डिसिप्लिन होता है। रूल ऑफ लॉ ये नहीं कि आपके मेरे ऊपर लॉ, रूल ऑफ लॉ की जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है हुकूमत पे लॉ लगती है। रिमेंबर द किंग यूज्ड टू से ऑफ विद हिज हेड, ऑफ विद हिज, रूल ऑफ लॉ तब आया जब उन्होंने कहा नहीं आप नहीं कह सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा इन कोर्ट। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ आया ही नहीं अभी, वी डोंट बिलीव इन एनी रिस्ट्रेंट्स ऑन द किंग। तो हम किंग की बात करें, हम कह रहे हैं पहली चीज़ बजट बनाते हो तो बजट को रिस्पेक्ट करो। मैं खुद रहा हूँ प्लानिंग कमीशन में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह मैंने देखा है बजट मेकिंग में, बल्कि हफीज़ शेख जब फाइनेंस मिनिस्टर था मैं डिप्टी चेयरमैन था, तो जब वो हफीज़ तकरीर करता था ना, जो हम लिखते थे वो तकरीर करता था, तो उसके बाद मैं उसको हंस के कहता था हफीज़ यार तुम कितना झूठ बोलोगे, हमने झूठ बोला है सारा, और ये बजट हम तोड़ चुके हैं, और ये बजट हम अगली हर ECC मीटिंग में बजट तोड़ते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो बजट मेकिंग प्रोसेस ठीक करें। दूसरी हम चीज़ कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है, आपको पता है चार सेक्रेटरी आपके मुल्क चलाते हैं बस, बाकी कोई नहीं है काउंट करता, चार सेक्रेटरीज, पांच चीफ सेक्रेटरीज, फाइनेंस, PSPM, कैबिनेट, और जो आप में सिविल सर्वेंट से बता सकते हैं चौथा इंटीरियर, बाकी काउंट ही नहीं करते, पर वो हर जगह इंटरफेयर जरूर करते हैं। तो ये हमारा निज़ाम सारा सिविल सर्विस का निज़ाम इस किस्म की बात है। एक ये एग्ज़ाम ख़त्म करो, नॉनसेंसिकल एग्जाम्पल, जहाँ एग्ज़ाम 2 साल लगा के कोई अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, फिर आके कराची मैनेज करता है, फिर जाके वो फाइनेंस में आ जाता है, फिर प्लानिंग में आ जाता है। वेयर आर द स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट को आप आने देते, जो एक एग्रीकल्चर का सीड स्पेशलिस्ट है उसको आप ग्रेड 18 से ऊपर नहीं जाने देते, जो एक साइंटिस्ट है वो ग्रेड 18 से ऊपर नहीं जा सकता, सेफ्टी सब वो प्रोवाइड के रूल करते हैं। पावर सेक्टर की जो हम कहते हैं मिनिस्ट्रियाँ बंद करो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई मिनिस्ट्री पावर की नहीं होनी चाहिए, कोई मिनिस्ट्री एजुकेशन की नहीं होनी चाहिए, कोई मिनिस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को अपनी जगह बैठाओ। Everything is not politics. Running a university is not politics. Politics should stay within parliament and ye bar na hai. Energy is not a political subject. Energy is a technical subject. Railway is not a political subject. Sheikh Rashid or Saad Rafiq can't run in railways. Railways should be run technically. Ye hum baatein kar rahe hain isme, theek hai ji. Phir ek aur cheez, kya planning commission ko azad karenge ya band karenge? Either it should be in charge for the of growth or it should be closed down. Both options are open. But it should not be subservient to the parliament, to the parliamentarians, or it should not be subservient to the finance ministry. Ab ye sab baatein aapko main prove kar sakta hu with evidence and data wagaira ye wo.
Nadeem, yahan ek sawal paida hota hai. Dekhiye, main bhi is baat ka qail hu ke wizarat-e-taleem ko band kar dena chahiye aur HEC ko isi waqt khatam kar dena chahiye. Bilkul bekar idara hai jiska ratti bhar फ़ायदा नहीं हुआ है आला तालीम को। लेकिन फिर हमें एक मुतबादल भी तो सोचना होगा ना, हमें सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि भाई इसको ख़त्म कर दो, उसको ख़त्म कर दो, देर हैज़ टू बी एन ऑल्टरनेटिव, अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। तो ये बातें हैं जिसके ऊपर जो बहुत गौर, बहुत फिक्र मांगती हैं।
बिल्कुल सही है आपकी बात, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव इज़ वेरी सिंपल, लेट द यूनिवर्सिटीज़ कम्पीट, Let the universities compete. Let them have credible boards of directors or boards of whatever, senates, and let them compete. Abhi to masla ye, aapne ek aur tamasha banaya hua hai. Har university ki law mein likha hua hai, jo HEC ne likhwaya hai, ki har senate pe 4 secretaries hai, balki 8 secretaries hai. 4 provincial, 4 federal. So bureaucracy is running universities. Why, how many, tell me, how many university boards are you on?
नहीं खैर मुझे तो नहीं बुलाएंगे
एग्जैक्टली
वो तो
एक और ही है एक सेकंड आई वाज द सेम क्वेश्चन ऑफ हफीज पाशा आई वाज द सेम क्वेश्चन ऑफ अकमल हुसैन ऑफ ऑल द क्रेडिबल सॉरी थिंकर्स दैट आई प्रोफेसर आई कैन थिंक ऑफ वो नहीं लगते बोर्ड पे ब्यूरोक्रेट्स लगते हैं तो यार फिर मुझे बताइए यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी
अच्छा लेकिन देखिए जब हम यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं हम कहते हैं कि लेट देम कम्पीट विथ ईच अदर ठीक लेकिन कम्पीट किस लिहाज से कौन यूनिवर्सिटी कितनी जल्दी डिग्री देता है एक कंपटीशन इसमें हो सकता यहाँ तो अब ये है कि जो स्टूडेंट आता है और जो पे करता है उसको डिग्री तो ये लाजमन देते हैं कोई यूनिवर्सिटी उससे इनकार नहीं करती अब तो पास रेट जो है वो 95% है डिग्री लेने का चलिए वो भी ले ले वो भी हम मान लेते हैं लेकिन फिर क्राइटेरिया क्या बने अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को देखें तो उसमें पाकिस्तान कुछ इतना ज़्यादा बुरा नहीं है कोई कम से कम 10 यूनिवर्सिटियां हैं जो फर्स्ट 1000 में गिनी जाती हैं लेकिन वो ख़ुद इंटरनेशनल रैंकिंग जो है इंतहाई फजूल है जिसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है जिसमें सिर्फ एक फॉर्म यूनिवर्सिटी को भरना होता इसमें लिखा होता कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं कितने टीचर्स हैं रेशियो क्या है स्टूडेंट टीचर टीचर्स की कितनी पब्लिकेशंस हैं अब पब्लिकेशंस तो आजकल के ज़माने में कोई माने नहीं रखती हैं अब उसकी बुनियाद पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो कि एक ज़माने में अच्छी यूनिवर्सिटी होती थी और जो अब बिल्कुल गिर चुकी है वो फर्स्ट 100 में आ जाती है अच्छा और मज़े की बात मैं आपको बताऊं ग्लोबली जी और ग्लोबली मैं आपको ये बताता हूं कि किस हद तक ये नॉनसेंसिकल है तो मैंने जब देखा कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को फर्स्ट 100 में क्यों शुमार किया गया तो पता चला कि सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत आला है अब मैं वहाँ 50 साल पढ़ा चुका हूँ उधर डिपार्टमेंट है ही नहीं मैकेनिकल इंजीनियर सो दिस इज होल थिंग इज कंप्लीट टोटल एब्सोल्यूट नॉनसेंस तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि यूनिवर्सिटीज को आप कैसे कंपेयर करेंगे और मैं तो समझता हूँ सिर्फ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स लुक एट हाउ दे विल कंपीट इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस
मैं आपको बताता हूँ बड़ा सिंपल है 50% ऑफ योर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड ठीक है दिस आर फैक्ट्स 34% ऑफ योर PhDs आर अनएम्प्लॉयड हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं लोगों को आई हैव इंटरव्यूड अबाउट 2000 कैंडिडेट्स सो फार उनमें से 5-6 रखे जॉब मार्केट विल टेल यू मैं तो बच्चों को कहता हूँ बड़े बेवकूफ़ हैं कि जी वो पढ़ रहे हैं भैया आपको डिग्री नहीं मिली कल आपके कायदे में यूनिवर्सिटी अगले दिन उन्होंने बंद कर दी तो जनाब मुझे मैं जब पहुँचा वहाँ तो हमारा दफ्तर वहीं है जी तो पहुँचा तो जनाब 4-5 बच्चे बैठे हुए कहते जी अंदर नहीं जा सकते तो मैंने उसे गपशप लगाई मैं क्या हुआ वो बता रहे थे मुझे तो मैंने उसे कहा यार तुम क्यों यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो कहते हाँ जी मैं बड़ा गंदा पढ़ाते हैं मैं कहा छोड़ दो यार छोड़ो उनसे गपशप हो गई वो मान गए उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया पॉइंट ये है दीज किड्स हु आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी आर वेस्टिंग द टाइम्स एंड वन डे दे विल वेक अप टेल मी वन थिंग व्हेन यू वेंट टू MIT आप क्या सोच के गए थे डिग्री लेने गए थे क्या करने गए थे
हाँ मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था लेकिन और इंजीनियरिंग
नो नो बट व्हाई हाउ डिड यू चूज MIT व्हाई कुडंट यू हैव गॉन टू अनदर यूनिवर्सिटी
वेल नाम था और सभी जानते थे कि उधर बड़ी आला रिसर्च होती है कि उधर से जो उधर के जो प्रोफेसर्स हैं दे एक्चुअली इन्वेंटेड क्रिएटेड देयर ओन
हाउ मेनी प्रोफेसर्स डू वी हैव इन आवर यूनिवर्सिटीज वी हैव डन अ सर्वे ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज 6% of your faculty are full professors according to Pakistan terms, not according to international terms. ये हमने डेटा इकट्ठा करके 100 यूनिवर्सिटीज का देखा है कि जी 6% ऑफ योर फैकल्टी इज प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू योर उसमें सारे जाली पब्लिकेशन वाले भी हैं दैट मीन्स दीज किड्स आर बींग टॉट जो भी यहाँ बच्चे हैं दे आर बींग टॉट बाई नोबडीज एंड देर गोइंग टू बी नोबडीज ठीक है लेट द मार्केट प्रिवेल यार इनके पेरेंट्स पैसे क्यों दे रहे हैं इनके लिए ठीक है ना ये चलेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी तो निज़ाम बनेगा। अब ये सारों को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये वो तमाशे, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या है? हु वुड हायर देम?
बिल्कुल, आजकल जिस चीज़ की मांग है वो एक्चुअल स्किल्स है, स्किल्स, नॉलेज, और ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। अब डिस्टेंस लर्निंग एक ज़रिया है, बड़ा अहम ज़रिया बना, तो जो अपने तौर पर सीख लेता है उसकी फिर मांग भी होगी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी।
सातवां हमारा चैप्टर है जी, सॉरी पांचवां चैप्टर हमारा ये है जी, जो मेरा फेवरेट चैप्टर, जो इकोनॉमिक्स का जड़ है। वी हैव नो मार्केट्स इन दिस कंट्री, क्योंकि आप एक फेल्ड सोवियत यूनियन है। यू आर नॉट इवन अ सोवियत यूनियन, नथिंग यार, कोई मार्केट ही नहीं। आप मुझे बताएं, चले एग्रीकल्चर ले लें, आप सब कहते हैं एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी एग्रीकल्चर की मार्केट क्या है? वीट की प्राइस आप फिक्स करते हैं, चीनी की प्राइस आप फिक्स करते हैं, वीट आप खरीदते हैं, सरकार खरीदती है, और जनाब क्या कहते हैं, सीड सरकार देती है, फर्टिलाइजर सरकार कीमत फिक्स करती है, आड़ती जो है वो डीसी के नीचे एम्प्लॉयड होता है, डीसी मार्केट कमेटी बनाता है, डीसी प्राइसेस फिक्स करता है। यार ये सोवियत यूनियन है, ये क्या है? व्हाई डोंट वी हैव अ मार्केट? कोई नहीं, इसी तरह आप और आ जाए। हर एरिया में हमने हिसाब लगाया है कि अगर हम मार्केट बाय मार्केट चले, 80% ऑफ योर GDP इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यार व्हाट आर वी? पहले ये तो हम तयन कर लें, खुदा के वास्ते बैठ के बहस कर लें, अब बनना क्या चाहते हैं? एक साइड पे वो हमारे मुल्ले कहते हैं इस्लामिक स्टेट है, दूसरी साइड पे हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप सोशलिस्ट बने, तीसरी साइड पे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे। तो यार वी हैव नॉट इवन डिसाइडेड व्हाट आर इकोनॉमीज। तो हम सिंपल सी बात करें, जो इकोनॉमी है वो चलती है मार्केट्स में, तो मार्केट्स तो पहले बनने दें। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, खेलते नहीं होंगे, शौक तो है ना? मुझे कोई क्रिकेट का शौक नहीं है, आपको तो है ना? सबको, आपको पता है ना बाबर आजम कौन है? आपको पता है ना कौन बॉलर कौन है बेस्ट? चलो जी, शाहीन अफरीदी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर बाबर आजम बैटिंग करने लगे और वो कहे पहले मैं DC साहब से परमिशन ले आऊँ, वो NOC लेने के लिए एफिडेविट दे, और फिर कहे जी मुझे ID कार्ड भी फोटोकॉपी करके मैं देंगे तो फिर मुझे परमिशन देंगे तो मैं बॉलिंग करूँगा, शाहीन अफरीदी उधर से जाए, वो जाए एक और NOC लेके बॉलिंग करे, ये आपने निज़ाम बनाया हुआ है, फिर आप कहते हैं कि यहां काम होगा। क्रिकेट क्या है जी? क्रिकेट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, सो इज़ अ मार्केट अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स ही हमारे पास है ही कोई नहीं। हमने हिसाब लगाया है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है 31 सेठ उसको ओन करते हैं। महबूबुल्लाह कह रहा था 22 हमारे पिछले ज़माने में जो हमने किया था, अब 31 है। तो आप मार्केट तो बनने को नहीं देते, आपकी सारी कंपनी सेठ ओन्ड कंपनीज है, आपकी सारी कंपनी सेठ ओन्ड कंपनीज है, एंड यू डोंट हैव अ ग्लोब, थिंक अबाउट दिस, यू डोंट हैव अ ग्लोबल साइज्ड कंपनी।
चलिए, मैं आपकी बात से यहाँ तक इतफाक कर सकता हूँ कि PIA और रेलवेज और स्टील मिल्स वगैरह वो तो बिल्कुल चौपट हैं, लेकिन मार्केट हर मसले का हल नहीं है। अब आप देख लीजिए, और मैं आपकी राय चाहूँगा इस पर, कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो कहते हैं कि आटा बहुत महंगा हो गया और एहतजाज पे एहतजाज हो रहे हैं। Market, the market can't handle that. How would you handle the protest in GB?
Very simple. You made them a false promise. The bureaucrats made them a false promise. इन्होंने कहा आटा आपको 2 रुपए का मिलेगा या वट एवर थोड़ी कीमत पे, और बिजली आपको 2 रुपए की मिलेगी। अब यार हालात बदल चुके, नहीं दे सकते आप वो। अब उनको बताएं यार कि नहीं दे सकते। ये क्या करते हैं कि आटा कहते हैं जो कीमत है ना, उस पर एक ट्रक भेज देंगे, वहाँ लाइन लग जाएगी और लोग लड़ेंगे। ओ भाई, बिजली उनकी बंद कर देते 8-8 घंटे, कौन है जी गिलगित से, यहाँ कोई है बता दे बिजली दो दो, मैं हो क्या हूँ वहाँ से, बिजली 12-12 घंटे बंद कर देते हैं क्योंकि पता है 2 रुपए की नहीं दे सके। भाई वाई यू मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, वाई डोंट यू जस्ट लेट द मार्केट वर्क? उनके पास बिजली तहयात पड़ी है, द वाटर रनिंग वाटर इज बिजली, एज यू नो यार, यू नो बेटर देन मी, रनिंग वाटर इज बिजली। उनको वो नहीं बनाने देंगे कि हम तुम्हें यहाँ से बिजली भेजेंगे। यार आई मीन दिस नॉनसेंसिकल स्टफ, यू क्रिएट योर ओन प्रॉब्लम्स। आप मार्केट चल लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं अपना गुजारा, बट आपने उनको जब प्रॉमिस की एक चीज़ पर डिलीवर नहीं करते, वहाँ एक्सपेक्टेशन और ख़राब हो जाती है।
बट द मार्केट कैन बी वेरी क्रूअल, यू हैव टू एडमिट दैट।
We'll have a debate on market in some other session.
I don't think you can prove your case. ये हमारे यहाँ बहुत सुर्खे आपके students बैठे हुए मेरे पास भी वो they think market को मुझे please बताएं. What is the market as I told you? Market is cricket. Market is athletics. Market is Wimbledon. मेरी बड़ी सिंपल सी गुजारिश है कि I want to win the Wimbledon. Would you allow me to win the Wimbledon? I really want to be the Wimbledon champion. Should I be the Wimbledon champion? क्यों जी anybody wants me to be the Wimbledon champion? भाई अगर मैं खेल नहीं सकता तो मैं विंबलडन चैंपियन वो जोकोविच अच्छा प्लेयर है यार वो जीत जाता है बाबर आजम ठीक है बाबर आजम मेरे से अब बहुत अमीर हो गया मैं जो मर्जी करूँ बाबर आजम साला खेल लेता है मैं नहीं खेल सकता तो यार मार्केट सिर्फ यही है ऑल द मार्केट इज डूइंग इज एज आई कीप टेलिंग यू आई एम नॉट सेइंग मार्केट जो आप बात करें ना वो ये सिर्फ होता है कि आप जब रूल्स अच्छे ना दें ना और हुकूमत बीच में पड़ जाए तो फिर मार्केट खराब हो जाती है अगर आप रूल्स अच्छे दें लेट द विनर विन ठीक है माना उसमें थोड़ा बहुत कभी हो जाती है अक्सर जो गड़बड़ होती है वो ये कि जब विनर जीत जाता है वो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को कंट्रोल करता है वो भी बात सही है मानता हूँ उसके लिए हम कर सकते हैं चीज़ें बट ये जो तरीका जैसे हमने एक और आज बात की है बड़ी मजेदार बात ये भी सुन लें जी हुकूमत का साइज़ जो है मार्केट का साइज़ ज़रा गौर करें इस्लामाबाद में जरा 120 रेगुलेटरी एजेंसीज व्हाट आर दे डूइंग एक से एक बड़ा वो आर ब्यूरोक्रेट को पता चल गया है कि एक रेगुलेटरी एजेंसी बना दो तो दफ्तर भी मिल जाएगा घर भी मिल जाएगी गाड़ी भी मिल जाएगी फिर वो तरीके ढूंढते हैं हम कैसे तंग करें लोगों को तंग करते हैं तो इंपॉर्टेंस बढ़ती है अगर मैं आपका रास्ते में हायल हो जाऊँ आप मेरे पास रोज़ आएंगे सिफारिशें करेंगे मिनतें करेंगे ठीक है तो ये निज़ाम बन चुका है एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको फैक्ट बता दूँ अभी आज ही हमने काम खत्म किया इस्लामाबाद में जरा कितनी आई फॉरगेट ना 114 115 समझ आया सोचिए ट्रेनिंग एजेंसी प्लीज़ बताएं हर डिपार्टमेंट एक ट्रेनिंग एजेंसी बना के बैठा फैकल्टी आपके पास यूनिवर्सिटी में नहीं है ट्रेनिंग अकेडमी बना के बैठे हुए अब ट्रेनिंग अकेडमी का जो माहौल बन गया वो भी घर गाड़ी का चक्कर बन गया हर चीज़ घर गाड़ी का चक्कर बन गया दैट्स वाई वी थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज कि आप घर गाड़ी का चक्कर खत्म करें और इनको कहें जी आप जैसे हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं आप भी पैसे के लिए काम करें ठीक है ये घर गाड़ी के लिए ना काम करें अब ट्रेनिंग अकेडमीज जो हैं हमने इसमें लिखा है कि ट्रेनिंग अकेडमीज बंद कर दें और यूनिवर्सिटी को ठेके दें वो ट्रेन करें वहाँ बना दें बजाय इसके हर बंदे ने अपने जना आपको पता है ये ट्रेनिंग अकेडमी होटल्स भी होती हैं इनके अंदर आपको निम शिम देखें अंदर रहने की जगह भी बनी हुई है ज़मीन का ज़िया है बिल्कुल आप देखें लाहौर में देखें मेरा पूरा माल रोड इन्होंने काफ़ी काबू किया हुआ है ट्रेनिंग अकेडमी और वहाँ क्या है इनके सरकारी घर है और यशी है तो ये चीज़ें हमने कही हैं ठीक है जी अच्छा डेवलपिंग मार्केट पर उसके बाद हमारा जी ट्रेड ओपननेस हम कहते हैं इकॉनमी ओपन होगी तो बात बनेगी अगर विंबलडन खेलनी तो बाहर खेलें आप सब पता नहीं आपको तो याद होगा साहब अब बाकी को नहीं पता मेरा नहीं ख्याल याद होगा किसी को भोलू पहलवान याद है जी किसी इन मेरा ख्याल यंग लोगों को तो नहीं पता हमारे पास एक पहलवान था जी
भोलू गामा से चलता
हाँ जी
गामा पहलवान
वो स्टेट सब्सिडी वाला पहलवान था उसकी स्टेट सब्सिडी थी उसको हम देते थे उसको मुरबे दिए हुए थे सरकार ने उसकी गजा की उसको वजीफे मिलते उसको बड़े वजीफे मिलते थे बड़ा अमीर था अब वो भोलू पहलवान लड़ता किसी से नहीं था पर उस समय जमान था एक दिन वो उसको एक चैलेंज आ गया इस्लाम खतरे में पड़ गया था बेसिकली मोहम्मद अली लड़ा था इनोकी से ठीक है ना इस्लाम खतरे में पड़ गया तो बड़ी डिमांड आई कि भाई इस्लाम को अब रेक्टिफाई करो कि जीते तो वो उसने इनोकी से लड़ना पड़ा भोलू तो लड़ा नहीं उसने कहा छोटे भाई से लड़ो अकी से वो मेरा ख्याल 3 मिनट से लड़ाई हुई थी या 9 मिनट अकी की बाजू टूट गई उससे पहले जो आ रहा था टीवी पे बड़ी मज़ेदार बात आ रही थी उनके उन्होंने कहा ये बड़ी इलस्ट्रेटिव कहानी है इकोनॉमिक्स के लिए और कहा यार भोलू पहलवान को टीवी पे लेके नया नया टीवी आया था उनका जी बताओ तुम क्या करते हो उसने कहा जी ये बड़ा मसला है जी खुराक बड़ी खाई थी पता है ना हमें 2-3 कुकड़ियाँ सुबह खानी होती हैं रात को 10 सेर गोश्त खाना होता है फिर घी खाना होता है फिर ये करना होता है जी आप कसरत क्या करते हैं कसरत ही बस हो डांड काट ले देने थोड़ा वो गुर्स फैला लेते हैं बस ये वो इनोकी से पूछा उसने कहा ये क्या बकवास है मैं रेगुलर खाना खाता हूँ मैं भागता हूँ मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ मैं स्पारिंग करता हूँ मैं मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स लगा रहा हूँ ठीक है तो ये हार गए उसके बाद ये डिसअपियर कर गए पता ही नहीं कहाँ गए अब हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है वो सारी हमारी इंडस्ट्री सेट विद द मशीन है सारी सेठों की चीज़ है हमारी भी वी हैवन गॉट अ सिंगल प्रोफेशनल रन इंडस्ट्री इन द कंट्री ऑल ऑफ देम आर सेठ कंपनीज और वो कोई R&D नहीं करते कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करते कुछ नहीं और वो बैठे हुए भोलू पहलवान की तरह फिर वो जब हार जाते हैं कोई नई चीज़ आती है फिर वो रोते हैं फिर हम उनको सब्सिडी दे देते हैं तो दिस मॉडल हैज़ टू चेंज
और फिर वो कहते हैं जब उनके सब्सिडी क्या होती है, जैसे आपके पास गाड़ियाँ जो हैं, अब सबके पास सुजुकी होगी या करोला होगी, आपको पता है वो कितनी धक्केनुसी गाड़ी है, आई मीन वाई डोंट यू हैव ईवीज, जो इस वक्त मेक सेंस फॉर अस, ईवीज, ईवीज आने नहीं देते, क्यों, क्योंकि चंद सेठों ने गाड़ियों की मार्केट कंट्रोल की हुई है, और वो सेठ जो उनसे आपको पुरानी धक्केनुसी गाड़ी देते हैं, वही टोयोटा ने हाइब्रिड इन्वेंट की थी, टोयोटा ने यहाँ हाइब्रिड नहीं भेजी, बहुत धक्केनुसी पुराना इंजन आ रहा है, फोर स्ट्रोक इंजन, विच इज़ नाउ डेड, विच इज़ नाउ द वर्ल्ड ओवर गॉन, अब ईवीज आ रही हैं, ईवीज हमारे पास नहीं आ रही, वाई, बिकॉज वी हैव दिस मॉडल, जहाँ हमने ओपननेस मानी नहीं, उनको कॉम्पिटिशन नहीं देना चाहते, आपने गाड़ी की इम्पोर्ट रोकी हुई है, अब आप कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ों के इम्पोर्ट रोकते, हमारी एक और अजीब चीज़, आज ही उमर सैफ ने बयान दिया, विच आई वाज शॉक्ड एट, आपके MIT के बंदे ने बयान दिया, आई वाज शॉक्ड एट, कि जी हमें मोबाइल फ़ोन बनाने चाहिए, मैं कहता हूँ खुदारा मोबाइल फ़ोन ना बनाएं, खुदा के वास्ते ना बनाएं, ठीक है जी, मेरी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सिंपल देख लें जी प्लीज़, ये है मेरी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, भी गौर कर लें, ये क्या चीज़ है जी, एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन कहाँ बनता है जी, सबको पता होगा, चाइना, एप्पल कहाँ है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, एप्पल, ठीक है, शायद माइक्रोसॉफ्ट ने ओवरटेक कर ली, बट इन दोनों में ऐसा जंग है, एप्पल इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, व्हाट डज एप्पल डू, एप्पल डज R&D, एप्पल इज एन R&D कंपनी, एंड इस लेसन से हम सीखे नहीं, कंपनीज nowadays R&D कंपनीज, they're नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन चाइना, मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ द लो ग्रेड थिंग, और नेक्स्ट जो आ रही है टेक्नोलॉजी चेंज, जो परवेज कैन टेल यू बेटर, कि अब आ रही है जो रोबोटिक एज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें तो आपको नौकरियां मिलनी नहीं, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी टोटली यूजलेस है, तो क्वाइट फ्रेंकली वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, और अगर हम दुनिया में कम्पीट नहीं करेंगे तो वी आर लॉस्ट, आप नेक्स्ट चैप्टर जी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप सोचेंगे
इससे पहले ना, ज़रा ये बताइए चाइना का मॉडल तो इससे काफ़ी मुख्तलिफ था, चाइना एक ज़माने में थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाता था, बल्कि ये इस्तेलाह चाइना ही की बनाई हुई है, अब तो वो बात ही ख़त्म होगी, नोबडी टॉक्स अबाउट द थर्ड वर्ल्ड एनीमोर, तो चाइनाज पाथ टू डेवलपमेंट वाज नॉट एग्जैक्टली दिस, इट वाज मेकिंग, इट वाज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वाज इट नॉट, करेक्ट मी, करेक्ट मी,
चाइना प्लीज याद रखिए, चाइना डिड समथिंग वी डिड नॉट, पीपल फॉरगेट व्हाट चाइना डिड, एंड दिस इज द रिसीव्ड विजडम एवरीवेयर. How do we learn? Please go back to the basics. Praise, how do we learn? How did we learn whatever we learned? Spelling le lo, math le lo. Bar bar sum karke, bar bar cheeze hum rate lagate hain. Aur log kehte hain repeat aur iteration se aap kaam seekhte hain. Jab aap problem solve karte hain, pehle ek tarike se, phir dusre tarike se, chauthe tarike se, phir aap solve karte hain. Theek hai na? Society bhi is tarike se. Society has to be a learning society. We are a backward looking society. हम तो पीछे जाना चाहते हैं ना, चाइना में लर्निंग सोसाइटी क्या थी, लुक एट द एक्सपेरिमेंट्स चाइना हैज अंडरटेकन, जब माओ ज़ेडुंग ने रेवोल्यूशन की, पता नहीं ग्रेट लीप फॉरवर्ड और क्या का कुछ कल्चरल रेवोल्यूशन, चाइना फेल्ड 5 or 6 टाइम्स, अभी भी चाइना फेल कर जाता है फिर आगे चलता है, तो चाइना ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए अपने साथ बड़े अच्छे किए हैं, उसमें फेलियर भी बड़ा हुआ है, फैमिन भी आया, सब कुछ हुआ है, पर वो एक्सपेरिमेंट करके आगे चलते गए. चाइना ने लॉन्ग टाइम अगो, आपने जो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की बात की, पहले उन्होंने मार्केट ओपन की, सारे मल्टीनेशनल्स को आने दिया वहाँ, ठीक है, जब मल्टीनेशनल्स आ गए वहाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट भूख जब आई, तो चाइना ने अपनी R&D बहुत बढ़ा दी, इस वक्त चाइना इज़ द लार्जेस्ट EV प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, चाइना इज ऑल्सो टेकन ग्रेट लीप्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना इज ऑल्सो टेकन ये जो ये इसकी जो इसने ट्रंप ने या किसने ट्रंप ने लगाया था मेरा ख्याल वो जो और बाइडन ने रीइन्फोर्स किया जो हुआवे को ब्लैकलिस्ट किया था अब चाइना इज उनको डर पड़ गया चाइना इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड अमेरिका में अब काफ़ी थर थर काम रहे वो अब मसला ये है कि चाइना ने इनफैक्ट इन 2000 द चाइनीज प्रीमियर जो भी उसका नाम था ये अनाउंस कि वी वॉन्ट टू इंक्रीज R&D बजट टू 3% ऑफ GDP और उन्होंने कर दिया और इस वक्त आप चाइना में देखें जो EV के ब्रांड्स आ रहे हैं जो AI के ब्रांड्स आ रहे हैं ये जो ऑटोनोमस कार्स के देर ह्यूज इन ये हाई स्पीड रेलवे चाइना लीड्स ठीक है इन कंस्ट्रक्शन चाइना लीड्स आई मीन चाइना इज लीडिंग इन मेनी सेक्टर्स इनफैक्ट पेटेंट्स में चाइना इज कैचिंग अप विद द US ठीक है सो चाइना इज लीडिंग इन मेनी सेक्टर्स अब की थोड़े बहुत पेटेंट्स रह गए जहाँ चाइना इज नॉट मेकिंग द सेम प्रोग्रेस इज US बट इंटरनेट में नाउ 6G में चाइना में बी लिटल more advanced than this thing. So these things are very important. But the point is, how do we make a learning society? नॉट सोसाइटी मैकेनिकल नहीं, ये जो अब पुरानी बात है ना आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वगैरह, पुरानी बात हो गई. वी रियली हैव टू फिगर आउट हाउ टू बी, जैसे वो संगे कहते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग सोसाइटी, हाउ डू वी मेक दैट. आई थिंक दैट्स वेयर वी आर फेलिंग, वी डोंट नो. दैट्स अ सोशल कल्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड लास्ट चैप्टर जो है, एक तो पॉपुलेशन वो छोड़ दें, हमारा लास्ट चैप्टर बिल्डिंग कम्युनिटी एंड सोसाइटी. वी थिंक कि कम्युनिटी हमारे पास बनी नहीं. आपको मैं एक दो बातें बता दूँ, तीन बातें, फिर आप बताएंगे. डू यू नो द नंबर ऑफ कजन मैरिजेस इन पाकिस्तान?
एवरी सेकेंड और थर्ड मैरिज.
ठीक है ना जी. डू यू नो द नंबर ऑफ इंटर एथनिक मैरिजेस इन पाकिस्तान? सिंधी पंजाबी, पंजाबी पठान, 2%. ठीक है. डू यू नो द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी? ये हमने मेजर किया सब कुछ. देर इज नो ट्रस्ट इन आर सोसाइटी. हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते. हमने पूछा लोगों से हु यू आर, लोग कहते हैं मैं राजपूत हूँ या चीमा हूँ या ये, दे डोंट से वी आर अ पाकिस्तानी. ठीक है. तो हमारी सोसाइटी में ट्रस्ट टूटा हुआ है. हम ये कह रहे हैं कि एक चीज़ है, ट्राई एंड थिंक वट सोसाइटल इंटरवेंशन. फॉर एग्जाम्पल, यू लव दिस, ये जो आपका ये चीज़ है ना, दिस शुड बी अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. कम्युनिटी सेंटर ऐसे होने चाहिए 1000. ठीक है. लाइब्रेरीज होनी चाहिए 1000. ठीक है. एंड PSTP में जगह ही कोई नहीं उन चीज़ों की. वी आर डूइंग नाउ न्यू प्रोजेक्ट दैट वी डूइंग, आई लीव इट देयर, व्हिच वी आर डूइंग, वी विल टॉक अबाउट सम अदर टाइम. वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन व्हाट इज अ गुड चाइल्डहुड, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. तो ये हमारा एजेंडा है जी सारा, कि इट हैज टू बी अ डीप सीटेड रिफॉर्म विच मीन्स चेंज एवरीथिंग इन आवर सोसाइटी एंड लुक फॉरवर्ड एंड गो फॉरवर्ड. हम बहुत माजी में जाते हैं, करप्शन थी, ओए पीछे चले जाओ, इस्लाम ये कहता है, वो कहता है, ओ यार नहीं ये हो गया यार. लुक फॉरवर्ड, वेयर आर वी गोइंग. और हमारे सिस्टम जो है, हमारे ढांचे, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन. वी डोंट हैव द केपेबिलिटी, द बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट हैव टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. हम पैसे लेके खा सकते हैं, बट यू कॉन्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज वी डोंट हैव द एबिलिटी. जैसे एप्पल है, एप्पल हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप दीज प्रोडक्ट्स. वो कैसे बनाते हैं आप सोचे ना, कितना टाइम लगता है. एप्पल विजन प्रो जो है नहीं आ रही है, टुक देम 7 years टू मेक. जो गाड़ी वो बना रहे हैं जो 25 में आनी है, 10 साल से लगे हुए हैं. दे हैव स्पेंट मोर मनी देन वी कैन इमेजिन ऑन बिल्डिंग अ कार. ये होती है फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट. हमारे पास क्या तीसरी चीज़, जो फाइनल चीज़ जो आती है, बड़ी मुद्दा लोग कहते हैं आजकल पब वो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट औरत है जिसने बात की है, माजुकाटो, आपने सुना है नाम उसका. तो कहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी शुड हैव अ मून शॉट. व्हाट इज अ मून शॉट? जब कैनेडी ने कहा था ना हमने मून पे जाना है, एंड नासा वेंट टू द मून. हाउ डिड नासा गो टू द मून? नासा इटरेटेड, दे ट्राइड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड दे फेल्ड. बंदे भी मर गए, एक्सप्लोरेशन भी, बट दे गॉट टू द मून. जब वो मून चले गए उससे फायदा क्या हुआ? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मून प्रोजेक्ट. अच्छा, ले ले एक और मून मून शॉट ले ले.
वेल, आई वुड से, आई वुड से दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ CERN, ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो के पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये फोन मुमकिन हो सका.
इंटरनेट और मून शॉट ले ले, अपना ही मतलब मून शॉट.
ये बताइए पाकिस्तान का मून शॉट क्या होना चाहिए? नहीं, होना क्या चाहिए?
होना क्या चाहिए?
हाँ,
good question. I think this is subject for discussion. बिल्कुल, I agree. I agree. मैं आपको बताता हूँ why your question is so important. It shows do we have a national ambition? We don't. What is the national ambition? When China started off, they had a national ambition. हमने जाना है जी, हमने अमेरिका को मारना है. उनका है मून शॉट, वो चाहे वो 100 साल लगेंगे वो कर रहे हैं.
ठीक है, मेरा ख्याल है ये सवाल हम इधर बैठे हुए लोगों से करेंगे. इस डिस्कशन को अब खोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो कहा कि हाँ पॉपुलेशन, अच्छा ये भी, इसका भी जिक्र है. मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले उसका जिक्र होना चाहिए, उसको हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए, हर फोरम में डिस्कस करना चाहिए. ये सोचिए कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारी कुल आबादी, यानी कि मगरबी पाकिस्तान की आबादी 28 मिलियन थी, अब वो बढ़ते बढ़ते 250 मिलियन हो गई है, यानी कि 8 गुना ज़्यादा हो गई है. तो इस रफ्तार पर अगर हम बढ़ते चले गए तो अगले 25 साल में ये 250 मिलियन से 500 मिलियन हो जाएगी, फिर एक बिलियन हो जाएगी, यानी कि 1,000 मिलियन हो जाएगी, फिर 2,000 मिलियन हो जाएगी, फिर 4, फिर 8। भाई हर बच्चा जो है रिस्क ले, अपनी रिस्क लेकर नहीं पैदा होता। ये पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, रिस्क नहीं लेकर पैदा होता। आप जाकर देखें सड़कों के ऊपर आपको कितने भूखे बच्चे, नंगे बच्चे मिलेंगे, उनका रिस्क कहाँ है? दिस इज बिफोर योर वेरी आईज। अच्छा, आपने
इसमें हमारा पैराडाइम थोड़ा डिफरेंट है।
आपका जो भी हो, जो इसमें हकायक बयान किए ना, वो चौंका देने वाले हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो दुनिया में सबसे कम है। अब क्या वजह है इसकी? क्या महंगे हैं या हम घबराते हैं इन चीज़ों की बात करके? हमने ये देखें, अपने स्कूलों में जो खरगोश का रिप्रोडक्टिव निज़ाम है ना, वो भी निकाल दिया कि इससे पता नहीं बच्चों के दिमाग ख़राब हो जाएंगे। हम उन्हें बताए, द ग्रेटेस्ट नेशनल सीक्रेट इज हाउ बेबीज आर प्रोड्यूस्ड।
गुड पॉइंट।
हाउ कैन
गुड पॉइंट, गुड पॉइंट,
गुड पॉइंट। तो जनाब एक बात ये थी,
पॉपुलेशन पे मैं एक छोटी सी बात कह दूं।
हाँ,
वी डिसएग्री। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वाइडली अवेलेबल, कोई मसला नहीं है। मसला बड़ा सिंपल है, हमने सर्वे किया, बड़ा सिंपल है। लोग कहते हैं मैं 5 बच्चे चाहिए, 6 बच्चे चाहिए। मैं अपने आप कहता हूँ, आई विश हैड बीन क्लेवर। मेरे आज 5 बेटे होने चाहिए, मेरा 1 बेटा है, 2 बेटी हैं। वेरी स्टूपिड, आई कांट सर्वाइव इन दिस कंट्री। 5 बच्चे मेरे होते, एक फौज में होता, एक जज होता, एक जज होता, एक सिविल से होता, तब मैं हाउ कैन आई लिव यार? यार रियलिटी है मेरी। आप मुझे कह रहे हैं मैं बच्चे कम पैदा करूं, दिमाग खराब है? आप मुझे क्या कह रहे हैं? देखे,
प्लीज,
आई एम बीइंग वेरी सीरियस। मैं आपको बता दूं, मैं आपको चैप्टर एंड वर्स बताता हूं, बड़ा सिंपल। देयर इज अ फेमस कुज़निट्स कर्व जो कहता है कि पॉपुलेशन गिरती है जब लोग अमीर होते हैं, उससे बात नहीं। मेरा प्रोफेसर जो था गैरी बेकर, गॉट द नोबेल प्राइज, उसकी सारी थ्योरी यही थी जिसके ऊपर ही गॉट द नोबेल प्राइज, कि देखिए जी बच्चे जो है ना, बच्चे आपको क्यों चाहिए? आपके बुढ़ापे को, मैं आपको ग्राफ ढूंढ रहा था इसके अंदर, कि आपको बुढ़ापे में लुक आफ्टर करते हैं। देखें बच्चों की क्या डेमोग्राफी में, एक हमारा ग्राफ पता नहीं यहाँ कहाँ है, बड़ा सिंपल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हम करते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो जिंदा कैसे रहती है? नायाब होती, नायाब ने काम किया, बड़ा सिंपल, कि जी आपकी आँप पर मैं जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बच्चे जो होते हैं छोटे, वो कैसे जिंदा रहते हैं? जबकि जवान लोग काम करते हैं, जवान लोग का सरप्लस हम लोग खाते हैं। सिर्फ जो 30, सॉरी हमारे यहाँ तो रकम है, अमेरिका वगैरह में 19 से लेके 75 तक जो बच्चे हैं, लोग हैं ना, वो सेव करते हैं तो बाकी लोग जिंदा रहते हैं। हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ कोई 30 से लेके 60 तक जो बच्चे हैं ना, वो सेव करते हैं तो आप और मैं खाते हैं, ठीक है। अब वो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा तो बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ के माँ बाप जो करते हैं पैदा, इसलिए करते हैं कि यार हमें बुढ़ापे में या कोई खुदा ना खास्त बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, बच्चे लोग आफ्टर करेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास 2-3 चीज़ें, एक तो आपके इन्फेंट मोर्टैलिटी बहुत हाई है, कई बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है वैसे भी आपकी मोर्टैलिटी हाई है, तीसरी चीज़ चांसेस ऑफ सक्सेस प्रॉब्लम है, चौथी चीज़ गर्ल्स ऑब्वियसली आर लाइबिलिटी इन दिस कंट्री लाइक इट और नॉट, तो यू नीड मोर बॉयज़। तो ये जो सारा इम्तजाज है ना प्रेफरेंसेस का, इसमें सोचना पड़ेगा, देर इज़ अ क्लियर डिमांड फॉर चिल्ड्रन सोसाइटी। ये कैसे ख़त्म होगी? जब हमारा प्रोग्रेस होगा। अगर हम प्रोग्रेस ही नहीं करते, अगर हम इसी बैठे हुए देहाती सोसाइटी में, तो लेबर इज़ एट अ प्रीमियम, तो जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा है।
इस बात पे भी मैं आपसे इत्तफाक नहीं कर सकता। आप बांग्लादेश को देखें तो वहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो पाकिस्तान से काफ़ी कम था, फीकस आमदन कम थी, लेकिन उन्होंने वहाँ वो रुकावटें नहीं थी जो यहाँ पर हैं। उधर खुलकर वो ये कह सकते थे कि बच्चे कम पैदा करो। यही बात ईरान पर सादिक आती है। उधर भी हो सका, ईरान में भी हो सका, यहाँ क्यों नहीं हो सका? यहाँ हम क्यों
नहीं? इस्लाम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इस्लाम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, आई एम टॉकिंग
उधर कम है।
नहीं, सऊदी अरेबिया, अब ईरान में इस्लाम है बिल्कुल, बांग्लादेश ने तकरीबन हटा दिया है। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस डिटरमिन द डिमांड फॉर अ चाइल्ड, फॉर चिल्ड्रन। हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में जो है, पीपल वांट चिल्ड्रन बिकॉज उनकी इंश्योरेंस उससे है, और देखा गया है कि जब आपकी नेशनल इंश्योरेंस स्कीम वगैरह चीज़ें आती हैं तो गिर जाता है। ये सिंपल बात है, बट इट इज सब्जेक्ट टू डिबेट एंड यस वी शुड हैव दिस डिबेट।
आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग अ माइंडसेट। तो उस पर
एंड द एनवायरनमेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू नो। हाँ, ये भी बड़ी बेकर का ये भी थी सता बड़ा मजदार एंड इट्स बीन प्रूवन बाय मेनी एम्पिरिकल स्टडीज। व्हेन यू नो कि मैं बच्चे को पढ़ा के उसको अच्छा डॉक्टर में कुछ बना सकता हूँ, तो आप फिर कम बच्चे पैदा करते हो, बिकॉज यू नो कि ये बच्चा पढ़ जाएगा, मुझे लुक आफ्टर करेगा, इसके पास बड़े पैसे आ जाएंगे, ये वो। व्हेन यू नो कि ये बच्चे ने पढ़ के भी कुछ नहीं बनना, तो छः बच्चे होंगे तो मेरा वेलफेयर बेहतर है, तो आप छः बच्चे करेंगे। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन मोटिवेशन। सी, या तो आप डंडे से काम करवाएं, अगर आपने चॉइस पे रखना है तो फिर चॉइस जो होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल चूज चिल्ड्रन।
चलिए एक बात, ओके, दो और बात। कहीं भी फौज का जिक्र नहीं आया, ये कि हाँ ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही जो है वो खाए जा रही है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ज़मीनों की बात कर रहे हैं, तो पूरा मरगला तो इन्होंने ले लिया हुआ है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में देखें, DHA से लेकर बहरिया वगैरह वगैरह सब ये ले गए हैं। अब तो ये एग्रीकल्चर लैंड पे भी कब्जा कर रहे हैं। अब 53,000 एकर्स ऑफ लैंड इन सिंध वर गिवन टू एन आर्मी सपोर्टेड फर्म। तो मेरा ख्याल है उसकी भी हमें बात करनी चाहिए। और आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात ये कि देखिए, सब कुछ यहाँ पंजाब के जाविये से देखा जा रहा है, और देखना ये चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग क्या कहते हैं, सिंध के क्या कहते हैं, GB के क्या कहते हैं। चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं KPK का कि वो किस हद तक एहसास महरूमी में मुब्तला हैं, लेकिन जो दूसरे सूबे हैं, ये कोई कौम बनाने का रास्ता नहीं है। इससे हम जुड़ेंगे नहीं, इससे हम टूटेंगे। तो बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। और यहाँ पर
फौज पे एक छोटी सी बात कह दूँ, आई नो एवरीबडी वांट्स टू डिस्कस द फौज, पर मुझे एक बात बताइए, फ्लड आता है तो आप किसको बुलाते हैं? ठीक है, जब आपको इलेक्शन कराते हैं किसको बुलाते हैं? ठीक है, अमेरिका में नहीं बुलाते, बरतानिया में कोई नहीं बुलाता, सॉरी, फौज डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करती।
सैलाब में
कोई नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं आती। अगर आप अमेरिका में देखें, उनका नेशनल जो है वो जो चीज़ है, जो हमारे इक्विवेलेंट ऑफ जो ये कौन से होते हैं, वो आते हैं नेशनल गार्ड, जो हमारे इक्विवेलेंट ऑफ रेंजर्स वगैरह, वो आते हैं, नॉट द फौज कभी नहीं आती। दिस इज़ अच्छा, तीसरी चीज़ इसको एक है, फौज आती है। हाँ, आपका इलेक्शन होनी है, फौज आती है, सेंसस होना है, फौज आती है। मुझे बात बताएं, आप खुद फौज में हर चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं ना। लेट्स कम टू DHA क्या है? प्लीज़ ज़रा सोच लें, DHA आपको लगता है बुरा, बिकॉज DHA इज इन योर फेस बिकॉज सक्सेसफुल। मलिक रियाज इज अ वेरी सक्सेसफुल, मलिक रियाज इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आई नो ही बग्स अस, बट ही केम फ्रॉम द ब्लडी ग्रास रूट्स और उठ के आ गया। आई नो अ जनरल जो मेरे साथ काम करता था, मलिक रियाज कहता था, ये तो 1,00,000 रुपए का ठेका लेने आता था मेरे पास, आज वो मलिक रियाज उसको एम्प्लॉय नहीं करता। मलिक रियाज मेड इट बिकॉज ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही डिड अ गुड जॉब, उसने बना दिया, हेट हिम बट ही डिड अ गुड जॉब, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद फौज, ही यूजेस द फौज। फिर ना DHA पे आ जाए, DHA क्या जी, प्लीज लेट्स गेट आवर फैक्ट्स स्ट्रेट। जब पाकिस्तान बना, ब्यूरोक्रेट्स ने पहली कॉलोनी बनाई, सैटेलाइट टाउन पिंडी एंड ये जो अपना वहाँ लाहौर गुलबर्ग और कराची में, कराची में बहुत ऐसा रियल एस्टेट है जो ब्यूरोक्रेट्स ने डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद आपका इस्लाम, आज भी इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेट खा रहा है, ठीक है, चेयरमैन CDA देखें क्या तमाशा लगा हुआ है, आज भी LDA वाले लोग बना रहे, वो हाउसिंग प्लॉट्स बनाते हैं, आपको नज़र नहीं आते बिकॉज वो विजिबल नहीं होते, इनके नज़र आते हैं, इनकी गलती है, बहुत विजिबल हो गए, बट क्वाइट फ्रेंकली दे आर डूइंग द सेम जॉब विद द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। द इशू इज़ कि अगर आपने सब चीज़ें मार दी हैं और फौजी कर रहे हैं काम, तो वो करेंगे, बट द गुड थिंग बट द फौजी इज वो पैसे नहीं लेते बजट से, ये तो पैसे लेते हैं बजट से, जो आपके SOEs हैं, PIA, ये सारी 1,000 चीज़ें हैं, कुछ 2,000 SOEs हैं आपके, सारे डेफिसिट में जा रहे हैं, 2-3 trillion के डेफिसिट में जा रहे हैं। तो वो तो फौजी फाउंडेशन पैसे तो नहीं लेती, या फौजी एंटरप्राइज
हैं जी,
टैक्स भी नहीं, टैक्स देती है,
गलत बात है. दे आर लेविड द टैक्स एट द सेम अमाउंट.
जो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप इन तमाम को बराबर कर दें, प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट करने दें,
ये बात
अगेंस्ट द NLC, अगेंस्ट ऑल दीज फौजी फर्म्स.
ब्यूरोक्रेट जो एमए अंग्रेजी क्यों के इम्तिहान पास किया उसको सेक्टर बनाना आता है, मतलब तमाशा बनाए हुए. अच्छा उसको नहीं हम देखते, हम सिर्फ फौजी को देखते हैं. हाय फौजी नहीं किया, हाय फौजी ने किया. ये लोग जितना मर्जी खाएं, वो ना आके वो कहता है, लैंडलॉर्ड आके कहता है मैंने बन गया, मेरे घर तक, मेरी हवेली तक लेके जाओ. मैंने तो ये फेस किए हुए ना जी, मैं तो 3 साल प्लानिंग कमीशन में इसको फेस करता रहा हूँ, लड़ाई हो चुकी मेरी उनके साथ. ये तमाशे क्या बनाए हुए हैं? व्हाई कांट वी बी सीरियस यार. इट्स नॉट अबाउट द फौज, इट्स अबाउट. अच्छा फौज को आप लोग जगह देते हैं बुला बुला के. अगर आप फौज को बैठने दें अपनी जगह पर और यहाँ हम स्ट्रक्चर्स बनाए, हिस्ट्री में देख लें, दी ओनली वे टू पुल आउट द फौज इज लाइक द किंग. ठीक है ना, किंग. हमने किंग को ब्रिटानिया में, अमेरिका में किंग को कैसे पुश आउट किया? अपने स्ट्रक्चर्स बना के. अगर आप स्ट्रक्चर ही बनाना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियंस आगे कहते हैं यार मैं अब बादशाह बन गया, मिनिस्ट्रियों में जैसे ये बैठते हैं, आप मुझे बताएं, आप परवेज भाई मैं आपको ले जाऊँगा, आप मिनिस्ट्रियाँ बनेंगे, मैं आपको ले जाऊँगा अपने साथ. आप ज़रा चल के देखें मिनिस्टरों की शाना अंदाज, 10 बंदे नीचे गाड़ी एयर कंडीशन चल रहा है, जनाब मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, यार ये क्या तमाशे कब ख़त्म होंगे?
मगर सवाल ये है ना,
अब फौजी सीख गया तो आपको रोना
है. क्या उनको बादशाह होना चाहिए या चौकीदार?
किनको?
फौज को हम किस लिए रखते हैं?
दे नॉट चौकीदार,
दे यही तो काम होना चाहिए, सरहदों का दिफा करना चाहिए. ये नहीं कि हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करें.
नहीं नहीं, नहीं।
अच्छा चलिए आगे चलते हैं. यस लेट्स स्टार्ट नाउ
विद द ऑडियंस. हां जी बोलिए. देखिए जी मेरा बड़ा सिंपल जवाब है, फौज चौकीदार नहीं है. माउजी तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन. इवन अमेरिका में प्रेसिडेंट, आपको याद है हिलरी क्लिंटन को, वो पता नहीं किसने, डिफेंस सेक्रेटरी किसी ने उसको गालियां दी थी टेबल पर बैठ के. ओबामा ने कोशिश की थी, नहीं वाइप आउट कर सका गुंतानामो को. फौज किसी मुल्क में चुप करके नहीं बैठेगी. ये बच्चों वाली बातें हम छोड़ दें, फौज चौकीदार नहीं बनेगी, बच्चों वाली बातें छोड़ दें. आपको समझौते करने पड़ेंगे, और कैसे समझौते करने पड़ेंगे? अगर आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. अगर ये इख्तदार की जंग है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है मैं एब्सोल्यूट रूल हूँ, नवाज कहता है मैं एब्सोल्यूट रूल हूँ, इमरान भी एब्सोल्यूट रूल बन गया. इमरान को मैंने बड़ा समझाया था, और भाई खुदा दे वास्ते ये तब बात बनेगी जिस दिन एक लीडर कहेगा मैं रूल्स बनाना चाहता हूँ और मैं एब्सोल्यूट रूल नहीं बनना चाहता, मैं एक्चुअली रूल्स अपने ऊपर बनाना चाहता हूँ. मैंने बताया ना जो अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ होता है, आप पढ़े मोंटेस्क्यू, पढ़े फुकुया, वो पढ़े जो भी सारे कर पढ़े पुराने फिलासफर, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ होता है किंग अपने आप को लिमिट करता है. यहाँ किंग अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता बिल्कुल. हर किंग अगर पार्लियामेंट में नमाज नहीं जाना चाहता, ये नहीं जाना चाहते. आपने देखा हमने पार्लियामेंट अटेंडेंस यहाँ लगाई हुई है, पार्लियामेंट्री अटेंडेंस की 0 होती है. ठीक है, ये कमरे में बैठ के, किचन कैबिनेट में बैठ के अपनी डिसीजन लेते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं करते. ये बाहर आके, मैंने कहा ना, जलसों में ये अनाउंसमेंट्स करते हैं, दे डोंट वांट टू डिबेट, दे डोंट वांट टू टॉक. तो फिर यार हम भी तंग आ जाते हैं. देखिए बात आपको याद रखिए, जब मुशर्रफ आया था हमने बाकायदा पब्लिक में लड्डू बांटे थे. हमने आज भी सर्वे किया है तो पता चला है कि फौज की अप्रूवल रेटिंग अभी भी सबसे ज़्यादा है. फौज की अप्रूवल रेटिंग तकरीबन 60% है, जुडिशरी की तो बहुत लो है.
या पंजाब की बात कर रहे हैं?
नहीं जी नहीं, पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान
बलूचिस्तान ने करके देखी
सर, किया है ना. मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट, सॉरी एक मिनट प्लीज. आई नो हमारे प्रायर्स को चीज़ हर्ट करती है. ये सर्वे जो है 20,000 लोगों का सर्वे है ऑल ओवर पाकिस्तान. क्यों जी काकड़ साहब आपको पता है ना बलूचिस्तान गए थे कि नहीं? हम थ्रू आउट द कंट्री किया था.
अगले
सवाल पे. हाँ जी
सवाल ये है कि आपने जो सारी ये अपने मैनिफेस्टो टाइप अपने चैप्टर्स आपने हमें बताए हैं, दे आर एकेडमिकली दे ऑल लुक वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जबकि ये सब लेजिस्लेचर का काम है और लेजिस्लेचर जो है वो जो पार्लियामेंट में है उनके अपने इंटरेस्ट हैं जो कि इसके अगेंस्ट जाते हैं, वो नहीं करेंगे, और अगर वो करना भी चाहें फॉर सेक द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी टू गेट वोट, उनको इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं करने दी जाएगी फ्रॉम द किंग फ्रॉम द आर्मी. तो आई डोंट थिंक ये आपकी जो चीज़ें हैं एकेडमिकली बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको आप किस तरह से समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
एक बात तो ये कि बांग्लादेश और कमेंट इंडिया में आप देखते हैं कि फौज वहाँ पर उस तरह से कब्जा नहीं कर सकी, और बल्कि वो सियासत से बहुत दूर है और वो तरक्की कर रहे हैं. अब पाकिस्तान के हवाले
बात सही है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं
जा रहा है
उनको बढ़ापे के लिए
8 फरवरी को.
लेकिन अगर वो 6 की बजाय 2 पैदा करें और
पता है कि इमरान खान को फौज
को बचाएं जो वो 4 मजीद बच्चे पैदा करके
लेकिन आज जो वो चलेगा
तबाही की तरफ लेके
इमरान खान को
वो अपना बुढ़ापा
इसलिए कि वो फौज का मेरे
से वो एक ज्यादा बेहतर बिजनेस मॉडल है.
और खतरा ये है और जो अरबाब अख्तियार है वो इससे डरे हुए हैं
दुनिया में
कि वो जीत ना जाए
दुनिया की
तहकीक इसलिए उसको
हमने जो सोशल स्ट्रक्चर जब टूटा हो जब बेड़ा गर्क हो तो फिर हमें सहारे ढूंढने हैं. हम क्या करें? आई कांट रिलाई ऑन माई नेबर, आई कांट रिलाई ऑन माई फ्रेंड एंड आई कांट रिलाई ऑन माई एजुकेटेड चिल्ड्रन. दो बच्चे मैंने पैदा किए उनको एजुकेट कर दिया उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको फिर मैं भगा रहा हूँ मिडिल ईस्ट या उठे हुए तो मैं तो कल्ला रह गया ना. वो भाई ये देखे ना हमारी रियलिटी. दो बच्चे को मैंने डॉक्टर बना दिया उनको नौकरी नहीं मिलती वो क्या करे? तो आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली वी हैव टू टेक दैट टू दैट्स फाइन. बट फाइन, अब आपने जो पहली बात कही थी अबाउट क्या था वो, सॉरी, हाँ एकेडमिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट जो मैंने हिस्ट्री में देखा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो पॉपुलर आइडिया होता है उसको किंग भी फॉलो करता है. पॉपुलर आइडिया किंग्स इसी तरह पीछे हटे हैं, पॉपुलर आइडियाज ने किंग्स को पीछे हटाया. फॉर एग्जांपल केस इन पॉइंट बड़ा सिंपल, आप देख लें मार्टिन लूथर किंग जब आया उसने क्या किया? एहतजाज किया, एक सोच आई. उससे पहले चले जाएं प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी जिसमें आपकी फैक्ट्री लेजिस्लेशन वगैरह सब आई, वो लोगों की थिंकिंग ने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, वीमेन सफरजेट मूवमेंट थी. सब मूवमेंट्स चलती हैं जब मूवमेंट्स का क्या मतलब आइडिया किसी वक्त दिमाग में आ जाता लोगों के, ये नहीं जरूरी कि मूवमेंट चले. जब आइडिया आ जाता है फिर आइडिया रुकता नहीं है. पॉपुलेशन में डिमांड नहीं तो ऑफकोर्स वो रूल करेंगे. जब पॉपुलेशन में डिमांड ही नहीं, एक और लोकल आइडिया आपको बता देता हूँ, छोड़े बार की बात, यहां भी तो हुकूमत ने भुट्टो जैसे बंदे ने माना है, इस्लाम किसने नाफिज किया था? भुट्टो ने किया था कि नहीं किया था? एमडी को किसने मारा था? क्यों किया था भुट्टो ने? डिमांड थी. भुट्टो खुद बैठ के एक बार तो उसने 2 साल पहले कहा था लाहौर में गदाफी स्टेडियम में खड़े होकर, मैं शराब पीता हूँ गरीबों का लहू तो नहीं पीता. उसी बंदे ने 2 साल बाद जाके वही काम किया. ठीक है, अब आप मुझे बताएं हदूद ऑर्डिनेंस को ये जो मर्जी करने पर है साहब, कोई मुझे उठा के दिखा दे वो क्यों, हालांकि रेफरेंडम ले तो फिर भी शायद हम जीत जाए, बट नहीं. तो क्वाइट फ्रेंकली पॉपुलर विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इम्प्लीमेंट और दूसरी चीज़ एक और चीज़, नहीं ये बात नहीं है मुशरफ के नहीं बैकिंग थी. ठीक है, मुशरफ ट्राइड टू डू इट, मुशरफ ट्राइड टू बी क्या कहते हैं सेक्युलर, हार गया. दूसरी चीज़ एक और इम्प्लीमेंटेशन, बाय द वे इम्प्लीमेंटेशन कोई चीज़ नहीं होती. एक पाकिस्तानी बड़ी मिथ है ये, अगेन हमारी लेजीनेस की मिथ है. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मुझे लगा था डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मैं कहें इम्प्लीमेंट क्या यार, मैं आपका खनसामा हूँ, आपको खाना पका के दे दूँ. देयर इज़ नो सच थिंग एज इम्प्लीमेंटेशन. ये चीज जब चेंज आता है वी ऑल हैव टू चेंज. इट्स अ बिग मूवमेंट, इट्स वेरी क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव स्लो, इट्स इटरेटिव, यू हैव टू चेंज. ये नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट हो जाए सुबह अनाउंस कर दिया. नो, ये चाइना में एक जनरेशन में भी नहीं हुआ, आधी जनरेशन में हो गया. ये कोई बात नहीं, जब सोसाइटी में विल आए. अब जो मर्जी आप कह लें तालिबान ने चेंज ले आए, Like it or not, Taliban is a better government than my friend Ashraf Ghani. They are doing better. ठीक है ना, वो उसकी अपना ये ईरान वाले शाह से तो गवर्नमेंट बेहतर ही है ना, वो डेवलप कर गए. आई मीन वी डोंट लाइक इट बट इट्स बेटर. तो मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में भी यही होना है. जी सर,
विल ऑफ सोसाइटी की बात हो रही
है. मेरा सवाल यह है वाई शुड आई वेट? आपने खुद ही शोकिया में ये इन लोगों की जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, वैसे इतफाक से यहाँ बहुत शायद इमरान खान के भी लवर्स होंगे, सबसे लोएस्ट इमरान खान की थी. तो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस, ये मैं आपका वक्त जाहिर नहीं करूँगा हमारी ऑडियंस का, इनकी परफॉर्मेंस क्या इस काबिल है कि इन्हें वोट दिया जाए? किसी एक बता दीजिए, इमरान खान نواز شریف، زرداری، کرپ لوگ اور ٹرن کوٹس راتوں دیکھے 99 میں مشرف نے جب ٹیگور کیا اس وقت نواز شریف کی حکومت 2/3 تھی، راتوں رات لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، عمران خان سفر دا سیم فیٹ راتوں رات، اس کے بعد ٹی وی پر یہی آ رہے تھے میں نے چھوڑ دی میں نے چھوڑ دی، یہی ہوا ہے. تو میرا کوشچن ہے وائی شوڈ آئی ووٹ فار دیم. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکر ہے ہی نہیں، یہ فیصلے نہیں کرتے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، وہ جو لڑکی 15 سالی لڑکی کی خاوند ہے فیصلے وہ کر رہا ہے. تو وائی شوڈ وی ویٹ ووٹ فار دیم؟
ڈونٹ، پلیز ڈونٹ، پلیز ڈونٹ. مائی آنسر از ویری سمپل جی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو پہلا پوائنٹ تھا آپ کا ڈیسیجن میکر، ڈیسیجن میکر کا دوسرا پوائنٹ تھا، پہلا کیا تھا؟ سوری نہیں، پرفارمنس، سوری. اسی لیے تو ہم نے پولیٹیکل ایجنڈا دیا سارا، پولیٹیکل ریفارم. وی نیڈ چوائس، ہمیں چوائس ہی نہیں ملتی. جو 200 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہی بڑے پیسے ضائع کرتے گئے. انہوں نے ڈیٹ تو انہوں نے بڑھایا ہمارا. مشرف کے زمانے میں ہمارا ڈیٹ چلا گیا تھا، ہمارے پاس چارٹ پڑی ہے. مشرف کے زمانے میں ہمارا ڈیٹ چلا گیا تھا 50% جو جی ڈی پی پہ، انہوں نے اٹھا کے بڑھا کے اس کو فوراً اوپر کر دیا. تو پیسے خرچنے میں ان کو کسی نے روکا، ٹھیک ہے، سرکاری دورے لگانے پہ، سروے کرنے پہ ان کو کسی نے روکا. دیکھیے ہر جگہ ڈگریز آف فریڈم ہوتی ہیں، نو بڈی از ایبسلیوٹ پاور. اگر آپ نے سسٹم بنایا ہے نو بڈی از ایبسلیوٹ پاور. اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو میں روتا رہتا ہوں کہ ہم ایک راجے کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو قصور ہمارا ہے. مجھے بتائیں نواز پرائم منسٹر کی پاور پہ لمیٹیشن کیا ہے. آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے آج ایک فتویٰ ایشو کیا جی، سنیے، یہ کسی سویلائز ملک میں ہو سکتا ہے؟ یہ پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، انٹرم پرائم منسٹر، سوچے نا، اس نے فتویٰ آج آرڈر کیا جہاں ساروں کو، ساری حکومت کو، سارے پروفیسروں کو، سب کو لگا دیا کہ آپ اب ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
یہ آج کی بات ایگزیکٹلی کیا ہے
کہ جی سارے آفیشیل جو بھی گریڈ 20 سے اوپر ہے وہ ملک سے اوپر نہیں جا سکتا، ملک سے باہر نہیں جا سکتا، چاہے پرائیویٹ چاہے وٹ ایور. آپ نے کانفرنس میں جانا، یو کانٹ گو. ٹھیک، یہ اس قسم کی تو پاور ہے ان کے پاس، ہر جگہ یہ پاور اپنی یوز کرتے ہیں ابسرڈلی. اگر یہ پاور گیو اپ کرنے کو، دیکھیں ڈیموکریسی امریکہ میں جب آئی تھی، جب جارج واشنگٹن واکڈ اوے، اگر جارج واشنگٹن بیٹھ جاتا ڈیموکریسی نہ آتی. یہ لوگ اگر یہ سویلائز نہیں ہوتے، فوج کو ضرور گالیاں دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بٹ آئی تھنک ہم اپنا دماغ بند کر دیتے ہیں فوج کے نام سے. وی شوڈ گو فردر اینڈ تھنک اباؤٹ وائی ڈونٹ وی ہیو اے سنگل سویلین اسٹرکچر ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ. جی
میرا کامنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے باتیں بتائیں. میں نے کتاب تو نہیں پڑھی، جو مجھے فیلنگ ملی آپ کی باتوں سے کہ آپ نے پاکستان کو ہوموجنائز کر دیا ہے. پاکستان کو ہوموجنائز نہیں کر سکتے ہم، پاکستان گیون دی کنٹراڈکشنز، گیون دی ڈفرنٹ سوشیو کلچرل اسٹیجز دی ڈفرنٹ پروونسز اینڈ کمیونٹیز آر، ہم بہت ڈائیورس ہیں، بہت ہیٹروجینس ہیں. آپ کا مینیفیسٹو سے مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے ہم کہیں لاہور یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ریئلٹی کچھ اور ہے. اس لیے کمیونٹیز نہیں بن سکیں، نہ کمیونٹیز بن سکیں آپ کے. اور دوسرا جو آپ کی مارکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مارکیٹ کر ہم کرم پر چھوڑ دیا جائے، تو پھر تھرپارکر میں کیا ہوگا، بلوچستان میں کیا ہوگا، ڈپرائیوڈ ایریاز میں کیا ہوگا؟ اور جو پولیٹیکل کنٹرڈکشنس ہیں ود ان پاکستان، ایکوالٹی کے لیے، جسٹس کے لیے، حقوق کے لیے، وہ تو اس میں نہیں ہے. وہ سب سے بڑی بیسس جو ہے وہ ناانصافی کی پاکستان میں ہے. تو وہ جو ہوموجنائزیشن جو ہے میری اس پر ریزرویشن ہے. اور جو مارکیٹ کی جو کیلسنیس ہے اس پر اگر سب کچھ آپ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. میرا خیال ہے ایک ہماری یونیورسٹی کی بہت بڑی فیلنگ ہے پرویز بھائی، میری خیال ہے ہماری یونیورسٹی پہ ایک بہت بڑی فیلنگ ہے. हमने लोगों को एक तो इस्लाम पे बहुत कर दिया, वो भी एक इंटरप्रिटेशन इस्लाम दैट आई डोंट थिंक मैनी मॉडर्न इस्लामिक थिंकर्स वुड एग्री, फजल रहमान टाइप बंदे जो मार दिया या गांधी टाइप बंदे नहीं एग्री करते, पर हमने उस पर एक लोगों को पढ़ा दिया। दूसरा जो हमने लोगों को पढ़ा दिया कि मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे कोई समझ नहीं आती कि मार्केट क्या बड़ी चीज़ है। खैर मैं आपके पहले पॉइंट पर आ जाता हूँ, आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली ऑन द कॉन्ट्री हम तो हेटेरोजेनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। द सिस्टम दैट इज होमोजेनाइजिंग सोसाइटी इज द ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम विच इज द सिविल सर्विस, द डीसी, हर जगह डीसी बैठा हुआ है, वही बंदे हर जगह बैठे हुए, वही हर जगह सिस्टम बैठा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट है कोई नहीं, और जनाब आपके जजेस भी वही हैं सब कुछ। हम तो उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं छोड़ो यार। दूसरा जो होमोजेनिटी आपकी सारी यूनिवर्सिटी सेक्टर एजुकेशन कंट्रोल कर, सर उस पर भी आते हैं ना हम, सारा लोकल गवर्नमेंट आएगी, सिटी गवर्नमेंट होगी, डिफरेंट सिटीज कम्पीट करेंगी तो बात बनेगी ना। अभी तो जनाब एवरी थिंग इज़ लाहौर, अगर आप लोकल गवर्नमेंट होगी तो गुजरांवाले में भी कुछ जाएगा वो वहाँ भी। मैं लास्ट टाइम वेंट टू गुजरांवाला तो आई सेड वेंट टू द बॉम्ब हिट हियर बिकॉज वहाँ तो इट लुक्स लाइक अ मेस, ठीक है। आप हमारे छोटे शहरों में जाएँ दे लुक लाइक दे लुक सो पैथेटिक, ठीक है। अब मसला ये है बिकॉज यू डोंट हैव लोकल गवर्नमेंट, यू हैव द सेम डीसीज रिवॉल्विंग एवरीवेयर, तो असल होमोजेनाइजिंग फैक्टर वो है, ठीक है जी। जो सोसाइटी को डिग्रेड कौन कर रहा है, सोसाइटी को डिग्रेड कौन कर रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव, आपने जो सारा सिस्टम अपना बनाया हुआ है शहरों के अंदर, यू डोंट हैव सिटीज। क्वाइट फ्रेंकली मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हैज नो सिटीज। सिटी की अगर मैं डेफिनेशन लूँ, जो हम लिखते रहते हैं जो सिटीज की डेफिनेशन दुनिया में है, सिटी की डेफिनेशन सर ये है, हाई राइज, मिक्स्ड यूज, डेंसिटी एंड वॉकेबिलिटी। डू यू हैव अ सिटी इन पाकिस्तान? एंड उसके अंदर अगर आप कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दें, यू डोंट हैव अ सिंगल सिटी इन पाकिस्तान। यू गॉट अ सिटी फॉर कार्स, यू हैवंट गॉट सिटी फॉर सिटीज फॉर पीपल। तो हम तो बात करें हेटेरोजेनिटी आने दो, प्लीज लेट इट कम। मार्केट क्या है? मार्केट इज द फोर्स दैट कनेक्ट्स पीपल। इस वक्त बलोचिस्तान चल रहा है, बलोचिस्तान ये इसको मैं काकड़ों कहता हूँ, जाए ये जाता नहीं साला, मैं क्या करूँ, ठीक है। कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कर रहे हैं बलोचिस्तान के साथ? हम लोग जुल्म कर रहे हैं बलोचिस्तान के साथ, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? साले ट्रेड ही करेंगे ना ईरान से। आप क्वेटा गए, मैं क्वेटा गया, शॉक कितनी ट्रेड हो रही है ईरान के साथ। उनका और कोई तरीका नहीं है, वो ईरान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको स्मगलिंग कहते हैं, ये तो आपका कसूर है ना। आई मीन यू आर कॉलिंग देयर, जो वो बेचारे 10-50 जनरेशन से कर रहे हैं उसको आप स्मगलिंग कह रहे हैं?
होती है, एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि हमने कैसे रूल करना है। ये सारे पॉलिटिशियन उल्लू बने हुए हैं, उनकी डुगडुगी पे ये नाच रहे हैं सारे दिन, इसलिए हमें जरूरत है।
पर आपने दो बातों का जवाब मुझे बड़ा अच्छा दे दिया।
जी जी।
एक तो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास खारिज। ये क्या निजाम है, प्लीज बता दीजिए। कहीं दुनिया में कहीं होता ही है? नहीं, मुझे सिर्फ ये बात बता दे, दुनिया में कहीं होता है? क्यों जी MIT में कितने सरकारी घर है?
जीरो।
जीरो। क्यों जी मुझे बताएं, किसी दुनिया में आप जाते हैं सरकारी घर है? तो एक तो पहले ये मुझे बता देना कि ये स्टेट क्या है आपका, कि जनाब पुलिस में जाए तो सरकारी घर, रेलवे में जाए सरकारी घर, फलानी जगह सरकारी घर, G6 में सर्वेंट क्वार्टर है बेतहाशा, ठीक है। और वो सर्वेंट क्वार्टर जद्दी पुष्टि जा रहे हैं, मतलब ये तो पहले मुझे निज़ाम समझाए ना, फिर हम बाकी बात करेंगे, ठीक है। अब बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसके पास सिक्योरिटी है वो कम बच्चे पैदा करेगा, बिल्कुल ठीक है, जिसके पास नहीं ज़्यादा पैदा करेगा। मेरे जैसा बंदा, आई विश आई हैड 6 बॉयज, बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली दैट्स द ओनली वे आई कैन प्रोग्रेस इन दिस सोसाइटी।
आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं।
क्यों कंफ्यूज कर रहा हूं? क्यों कंफ्यूज? मेरा एक बेटा आज पॉलिटिक्स में होता, एक देखें जस्टिस खोसा ले लें, खोसा फैमिली के 5 भाई हैं, देखें कहां हैं, ठीक है। हर फैमिली में आप देखें यार, डेटा भी तो बोलता है ना। आप ये तो ना करें बच्चों को, बेचारों को कंफ्यूज करें, और जी ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब चीन भी कह रहे ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये तो है भी एक मल्टीजन किस्म की इनकी चीज है। चीन भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा है, यूरोप ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या तकलीफ है।
सर मेरा सवाल आपसे है कि हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो व्हाट शुड वी वोट फॉर, इसको अगर बुलेट पॉइंट्स में आप समराइज कर लें ऑडियंस के।
टॉपिक है व्हाट नॉट हु। व्हाट तो हमारे पास है ही कुछ नहीं इस वक्त, तो कुछ है ही नहीं। यू कैन वोट, आपको मैं बताऊं क्या वोट करें। वोट करें बिटवीन रोड्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वोट करें बिटवीन लैपटॉप्स एंड रेजिंग योर इनकम बाय 50% बाय 100% व्हाटएवर, जो कि सारी बकवास है। तो अगर आप मान जाते ऐसी बातें, फिर और बात है, देयर इज नथिंग टू वोट फॉर।
गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर योर सेशन. सबसे पहले व्हाट शुड यू वोट फॉर स्पाइड्स प्रायोरिटी फॉर फैब बेड सिलेक्शन होना चाहिए. और सीम्स लाइक ये जो मैनिफेस्टो सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं और ये पाइट्स का जो मैनिफेस्टो है ये कहीं से आया गया है या ये किसी एक स्पेसिफिक क्लास की तरफ से हमारे तक पहुंचाया जा रहा है. और थर्ड चीज़ सर, आप हर चीज़ में कह रहे थे कि हर चीज़ बड़ी सिंपल है. सर ये सिंपल उनके लिए जो पावर में बैठे हैं, ये ना आपके लिए सिंपल है ना हमारे लिए सिंपल है. ये सारे एक आइडियलिस्टिक आइडियाज़ हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. और सर आप जिस तरह इसको कह रहे हैं तो सर क्या आप इस तरह कहें कि डायरेक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी हमारी आर्म फोर्सेस को बना लेनी चाहिए ताकि. और सर एक लास्ट चीज़ सर, आपने सारे सेशन में कहा कि डीसी एसी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
वो है प्रोविजन. अब अगर बात समझ ना आए तो और बात है, ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि जी कोई बात प्रैक्टिकल, मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल नहीं है. प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक है, मुल्ला बड़ा प्रैक्टिकल है, रियासत मदीना बड़ी प्रैक्टिकल है, पीछे जाना बड़ा प्रैक्टिकल है, दाढ़ियाँ रखें, हिजाब पहने, नमाजें पढ़ें, खुश रहें, भटकड़ाई खाएं, मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? मेहनत तो करनी नहीं आपने. आप जो मुझे बात कह रहे हैं बड़ी सिंपल कह रहे हैं कि मुझे पका के खिचड़ी दो. मैं आपको पका के नहीं खिचड़ी दे रहा, और मैं नहीं पका के दे सकता. ह्यूमन लाइफ में पका के नहीं दे सकते. बच्चे आपने चूज़ करने, मैंने नहीं चूज़ करने, परवेज भाई ने नहीं चूज़ करने. हम कह सकते हैं बच्चे कम पैसे कमाओ, नहीं मानेंगे. मैं तो आपको बात कर रहा हूँ कि रियलिटी ये है. ये हो सकता है कि डंडे के जरिए, जैसे चाइना ने कहा था वन चाइल्ड पर फैमिली, हम कर सकते हैं डंडे के जरिए काम करें, पर वे फौजी कराएगी, हम तो नहीं करा सकते. फिर फौज को बुलाएं और वन चाइल्ड पर फैमिली मारे, ठीक है. अगर आप वो नहीं कर सकते तो देन क्वाइट फ्रेंकली वी हैव टू हैव अ बिहेवियरल चेंज. मैं बात करूँ बिहेवियरल चेंज की, बिहेवियरल चेंज नहीं हो सकता. कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है, जाता हूँ मैं ये ड्रग स्टोर में सारे पड़े हुए हैं. अगर लोग नहीं खरीदते, यूज़ नहीं करते, मैं क्या करूँ? डंडे मार के उनको करो, फिर डंडे मार के करना तो ज़रूर कर ले. जी बताइए
सर, आपने बात की कि प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना चाहिए. सर सर अगर इस तरह करेंगे तो कोई एमएनए जो इलेक्ट होता है आवाम के वोट के ज़रिए, हम किस तरह उसको नाइल कह सकते हैं? सही है सर. और दूसरी बात सर, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ फौज ही मतलब अहल है, तो हम सबको फौज में भर्ती होना चाहिए ताकि हम इसके अहल हो सके कि मुल्क को चलाएं.
बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए बहुत मुल्कों में इंक्लूडिंग इसराइल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, एवरी जगह कंस्क्रिप्शन इज कंपल्सरी, यू हैव टू गो टू फौज. बहुत मुल्कों में, एक मुल्क नहीं है, बहुत मुल्कों में. आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली इट्स अ गुड आइडिया. पाकिस्तानी शुड गो टू द आर्मी फॉर अ ईयर. पाकिस्तानीज आर टोटली इनडिसिप्लिंड and they should go to the army. That's one point. The second point जो आपने बात कही है ना कि ये क्या पहला क्या, हाँ अवाम के वोट से आते हैं. आई एम सॉरी, इसमें भी सोचने वाली बात है. वोट जो है और अवाम, ये अपने इसको क्या पहाड़ पर चढ़ाया हुआ है. डेमोक्रेसी के पहले रीडिंग्स तो पढ़ लेना, डेमोक्रेसी होती क्या ना. बिल्कुल गलत बात है, प्लीज़ चेक कर लें, प्लीज़ चेक कर लें. अगर पॉपुलर सॉवरेंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाते हैं. ना, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बात होती है, इट्स नॉट विदाउट. प्लीज़ इस पर बहुत कॉमेंट्री है, बहुत कॉमेंट्री है, पढ़ लें इसको प्लीज़. कीन की किताब है, एक फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ें. वो बार बार कहते हैं, उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते. ये डेमोक्रेसी जो अल्ट्रा डेमोक्रेसी नहीं, पॉपुलर वोट दिस बुलशिट, वी हैव टू हैव. उसको भी फ्रेम करते हैं जो आजकल ECP कर रही है, गलत कर रही है पर कर रही है. आई थिंक आप ये ज़रा थोड़ा सा अगर गौर से सोच लें ना, बगैर बजाय इसके कि गेटिंग कैरिड अवे, फंडामेंटल राइट्स को अर्श से नहीं उतरे. एंड देयर इज नो सच थिंग. आपने देख लिया गाजा में जो हो रहा है, आपने देख लिया दुनिया में क्या हो रहा है. फंडामेंटल इवन अमेरिका में जब डेमोक्रेसी आई थी, उन्होंने कालों को वोट नहीं दी थी. और जब डेमोक्रेसी दुनिया में आई थी, उन्होंने सारों को वोट नहीं दी थी. वोट तो जो है बड़ी रिसेंट फिनोमेनन है सारों को, ठीक है. तो ये बातें हम जो कह रहे हैं पॉपुलर सॉवरेंटी, यार ये तो दुनिया में आई कभी नहीं, अभी आई है और वो भी अनस्टेबल है. आप देख रहे हैं, देखें बात बड़ी सिंपल है. आपको फॉर एग्जांपल देर आर ऑलवेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन खड़ा होगा. दो मेथड हैं, आपने पब्लिक सर्विस चाहिए ना, दो तीन मेथड ऑफ सिलेक्टिंग पीपल. एक आप बंदे को हायर कर ले, एक आप बंदे को वोट कर ले, पब्लिक सर्विस ही है ना. तो आप जब वोट के करा रहे हैं तो वोट आप क्या करा रहे हैं? आप करा रहे हैं कि कोई बंदा, कोई नाचने वाला बंदा, गाने वाला बंदा आके बैठ जाए एनर्जी पे. हो सकता है ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है जब बेड़ा गर्क हो जाए सब. तब आई एम सॉरी, दुनिया जहान में ये रेल में डीपोलिटिसाइज में आजकल इस पर भी पेपर कर रहा हूँ, बड़ी इस पर क्या कहते हैं कॉमेंट्री है.
कि हर चीज़, फॉर एग्जांपल कोविड आया था, उन्होंने कहा यू कांट पॉलिटिसाइज हेल्थ, हेल्थ कैन नॉट बी पॉलिटिक्स, हेल्थ हैज़ टू बी रन बाय एक्सपर्ट्स, रेलवे इज नॉट पॉलिटिक्स. अब बिजली का निज़ाम चलाना है यार, उसको पॉलिटिशियन कैसे चला सकता है? देर इज नो वे, आई डोंट थिंक देर शुड बी एनर्जी मिनिस्टर. देर इज नो रीजन फॉर एनर्जी मिनिस्टर. क्यों जी, डू यू नीड अ मिनिस्टर फॉर फिजिक्स?
देखिए, हम हमारी पहले भी बात हुई थी इस पे कि वजारत तालीम ख़त्म कर रहे हैं, HEC ख़त्म कर, लेकिन मुतबादल फिर आपको बताना होगा और बहुत तफसील से बताना होगा, तभी आपकी बात में वजह.
मुतबादल क्या रखना है? देखिए ना, पहली चीज़ याद रखे, हमारा जो प्रिंसिपल है, जहाँ चीज कोई चाहिए तो बनाओ. अगर आपको ये यहाँ आप कहें मुतबादल, ये छत है पर मुतबादल कुछ बना, भाई छत अगर चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. हमें चाहिए क्या एजुकेशन में, क्या आपको चाहिए बताइए?
ओ, एजुकेशन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, स्कूलों का. प्राइवेट स्कूल से ये मुल्क नहीं चल सकता. एजुकेशन इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट. अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में आप कहते हैं कि होते ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि होते हैं. UN Declaration of Human Rights बहुत वाज़े तौर पर कहता है कि ये इंसान के बुनियादी हकूक हैं.
बहुत अच्छी बात है. और वो कहाँ इन्फोर्स होते हैं?
नहीं होते,
नहीं होते ना.
लेकिन हमारे पास गोल पोस्ट तो है.
देखिए जी, गोल पोस्ट ज़रूर है और सब है, बट अगर आप मुझे कहते हैं कि गोल पोस्ट सिर्फ एक सरकारी बाबू दे सकता है आपको, तो मेरे ख्याल आपकी भूल है. गोल पोस्ट जो हैं, कुछ हमें खुद भी बनाने हैं और हम बनाते हैं, एंड दैट्स द वे द वर्ल्ड वर्क्स. अगर हम सिर्फ बाबुओं पर डिपेंड करें, वो हमारा फिर वही पुराना खिचड़ी वाला मॉडल है कि मुझे पका के कुछ दे दो, मैं खुश बैठ के खाऊंगा. नहीं, वी हैव टू मेक आर ओन सोसाइटी, आर नेबरहुड्स. जो हेटरोजेनिटी की बात करें, हेटरोजेनिटी इज नेबरहुड्स. व्हाट डू वी हैव फॉर नेबरहुड्स? वी डोंट हैव देम. बिकॉज व्हाई? बिकॉज वी डिडंट अलाउ सिटीज टू डेवलप. हमारी जो होमोजेनिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी गॉट हाउसिंग सोसाइटीज एवरीवेयर. हाउसिंग सोसाइटी इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट, इज अ बैड कॉन्सेप्ट. मुझे कोई मुल्क बता दें जो जुडिशियल कॉलोनी है. आप DHA को तो बात करते हैं, मुझे कोई मुल्क बता दें जो जुडिशियल कॉलोनी है. बापडा कॉलोनी है, सुई गैस कॉलोनी है, प्रोफेसर कॉलोनी है. ये क्या तमाशा आपने बनाए हुए जी?
हमारे सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं,
चले
तो बस ये आखिरी सवाल होगा.
चले जी, सवाल होगा या कमेंट होगा, ये है कि जो आपकी बातें वो बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज है हमारे मुल्क के लिए और बड़ी अच्छी बातें. आई डू एग्री विथ ऑल योर, यू नो, जो आप जो भी आपने बातें की हैं. लेकिन जो प्राइमरी जो हमारे जो इलेक्टोरेट्स होते हैं MP और MNAs, इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाजे है, ना कुछ और है. बस ये है कि जो बंदा उठ जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए, वो चला जाता है. ऑन द अदर हैंड, वो लोग असेंबली में भी नहीं बैठते. जो आपने सर्वे करके बताई, वो लोग जब हमारी आवाज़ असेंबली तक जा ही नहीं रही, हम इन लोगों को बार बार क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है. दूसरा ये कि इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो हमें चेंज करनी चाहिए कि यार ये लोग तो अटेंडेंस की कम है, तो उसको हम बार बार क्लास रूम में क्यों भेजें?
यही तो चीज़ें हम लिख रहे हैं कि दो बार ज़्यादा किसी को आने ना
सर. ये दूसरा ये कि देखें ना, इस चीज़ को चेंज करने वाले वो अगेन यही बैठे
हैं. नहीं, ये लोग नहीं हैं, आप लोग हैं. हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर आप लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे में कोई मूवमेंट ही नहीं कि इनको चेंज करो, हम सारा वक्त उधर छुप जाते हैं. फौज का कसूर है, चलो छोड़, बस बस यार फौज का कसूर है, आप सो जाओ. ना, अगर आप लोग अपना खुद सोच नहीं सकते कि चेंज का लाना है, फॉर एग्जाम्पल 2 टर्म लिमिट कर दें भाई. फॉर एग्जाम्पल मरियम और समदी जी और सब इकट्ठे क्यों आ रहे हैं भाई? एक बंदा क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अब मरियम लग जाएगी चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो लग जाएगा यहाँ, और समदी जी लग जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर, और वो लग जाएगा, छोटा भाई लग जाएगा कहीं और. यार ये क्या
बीइंग अ लोअर मिडिल क्लास या इवन जो हमारी जो क्लास सिस्टम है पाकिस्तान में ना, वो आप देख लें, सबसे ज्यादा जो ना बंदे गरीब हैं. ठीक है, मिडिल क्लास होंगे या लोअर मिडिल क्लास होंगे, वो तो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे. तो जो लोग बंदे इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, उनका अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो अपनी उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है. अगर वो बंदे आवाज़ उठाएंगे तो चले, उनको कोई और नहीं उठाएगा तो सियासतदान ज़रूर उनको उठाएंगे. उसको सियासतदान या तो बिठा देंगे, पैसे देंगे, या तो कुछ और उनका कोई तरीकाकार करके साथ.
ठीक है यार.
और सर दूसरा ये, उन लोगों को या तो फिर फौज सिक्योर करे कि भाई आप उठो, या मतलब हमारी कोई ला पुलिस कर.
सोसाइटी ऐसे नहीं चलती होती. देखिए दो चीज़ें, इनका इंजीनियरिंग मॉडल जो था ना फिजिक्स के मॉडल्स, ये बड़ी मजा, फिजिक्स बहुत आसान चीज़ है.
فزکس سر فورگیو می, بہت آسان چیز ہے یہ. میرا خیال کس نے کہا تھا, یہ کسی نے نہیں, آپ کے کسی فزسسٹ نے کہا تھا. آئی تھنک کوپمنز واز دا فزسسٹ ہو ٹرن ٹو اکنامکس,
ہے نا.
وجہ کیا ہے؟ سمپل بات اس نے کہی تھی, وجہ بھی اس نے کہی تھی, کوپمنز نے میرا خیال کہا تھا, وجہ اس نے یہی کہی تھی, واز دا فزسسٹ ٹرن ٹو اکنامکس. اس نے کہا یار ایٹمز ڈونٹ ٹاک بیک, ٹھیک ہے, یہاں تو آپ لوگ سارے بولیں گے. اور ایٹمز کو آپ یہ اگر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایٹم کو لیبورٹری میں ادھر سے مارے نا, وہ ایکسیلیٹر میں گھومتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر ہم مارے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. سو کوائٹ فرینکلی سوسائٹی از اے ویری کمپلیکس, اور سوسائٹی میں ایسے بات نہیں ہوتی کہ آپ جو مرضی کر لیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ اے پروسیس آف چینج اینڈ اے پروسیس آف تھاٹ. اور کوائٹ فرینکلی ایک سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, ایک کارپوریشن کو چینج کرنا نا, فار ایگزامپل بڑی اچھی لٹریچر آپ پڑھ لیں, جیسے کارپوریشن چینج ہوتی ہیں, آئی بی ایم ریسٹرکچر, جنرل موٹر وغیرہ وغیرہ, ان کو پڑھیں. وہاں کیا ہوتا ہے یار, ایک فیمس تھی زیروکس کی ریسٹرکچرنگ, اس کی اسٹوری پڑھیں یار, ان کو 10 سال لگے, بیکاز دے ہیڈ ٹو چینج دا وے مائنڈ سیٹ کی بات, دے ہیڈ ٹو ریٹرین دا پیپل, دے ہیڈ ٹو ریسٹرکچر دا ہول کارپوریشن. نمبر دو چیز ہے کہ کارپوریشن ریسٹرکچرنگ میں دو چیزیں بات ہیں, ایک تو پہلے پوری ٹاپ لیڈرشپ ہیز ٹو گو, نمبر دو everybody has to be retrained, نمبر تھری the way they think has to change. تو ہم تو یہاں کچھ بھی نہیں چینج کرنا چاہتے, ہم تو یار آپ داڑھی بھی نہیں شیو کرنا چاہتے یار, تھی لوگ تو سارے بیٹھے ہوئے پاس کے, ٹھیک
ہے.
ایک آخری سوال ادھر
بولیے جی.
میرا نام محمد فیاض عالم ہے
جی,
اور میرا ایک مختصر سوال یہ ہے, آپ نے بڑا اچھا سمجھایا ہمیں اس کو, یہ پرابلم ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے. کیا آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھاتے ہیں یہ بات کہ دیکھیے یہ ہمارا پرابلم ہے ملک میں اور یہ سلوشن ہونا چاہیے, بجائے یہ ہتھیار سے کام نہیں چلے گا اور وہ اپنے اون پرسنل ڈیسیجن سے کام نہیں ہوگا. شکریہ.
دیکھیں جی, جو حکمران ہیں وہ کیوں چینج کریں؟ اگر میرے پاس پاور ہے میں کیوں چینج کروں؟ اگر میرے پاس میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے
وہ بھی ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو ایک بات سمجھا سکتا ہوں کہ صاحب آپ ایسا
نہیں, میں نہیں سمجھا سکتا, نہیں اگر
ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو نیچے سے بھی
ہے. نہیں جی, بالکل غلط بات ہے. اگر ہماری جو قوم ہے نا, وہ آپ کو پتا ہوگا ایک جوک تھا, ہور بندے لا دیو والا جوک پتہ ہے نا, کہ قوم کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں یار تو اگر قوم جوتیاں کھانے کو تیار ہے تو لیڈر کیوں چینج کرے گا؟ نہیں, لیڈر کیوں سمجھائیں؟ اگر آپ لوگ جوتیاں کھانے کو تیار ہیں تو لیڈر کو کیوں سمجھائیں؟ ٹھیک ہے, جب قوم سمجھے گی, جب قوم میں شعور ہوئے گا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا کیسے, نہیں یار پہلے بتائیے واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ. ہماری قوم تو اسلام چاہتی ہے اور تو کچھ چاہتی نہیں, اور اسلام بھی چاہتی ہے لبیک والا, تو لبیک کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں, چلیں آپ عورتوں کو باہر لانا چاہیں گے؟ اس آڈینس میں کتنی عورتیں بیٹھی ہیں؟ ٹھیک ہے, میرے پاس ابھی میں نے کانفیس کروایا تھا تو وہاں جناب ایک یونیورسٹی نے ہمیں باقاعدہ میسج بھیجا کہ ہم آپ کے پاس تب بھیجیں گے اپنے بچے جب آپ عورتیں اور مردوں کو سیپریٹ رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کی تو ویلیو سسٹم یہ ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ماڈرن. دوسری چیز, اگر میں بچوں کو کہتا ہوں بھائی پڑھ لو, فار ایگزامپل میں سب سے پوچھتا ہوں, چلے یہاں بتائیں کتنے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, کون سی کتاب پڑھیں جی بتائیے, ہاں جی آپ جی آپ جی چلے گڈ, یہاں تو بہت اچھی گیدرنگ ہے. میں نے آج صبح سول سروینٹ سے پوچھا وہاں ایک بتائیے کتاب پڑھنا, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر میں نے جب یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں این ڈی یو بھی جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم کتاب ہی نہیں پڑھتے, سعید بک ڈپو جا کے پوچھو وہ کہتے ہیں کوئی کتاب لیتا ہی نہیں آپ. تو آپ کا جب معاشرہ یہ بن چکا ہے, پھر ایک اور چیز کنورسیشن. اب ہم جناب ہفتے میں تقریباً 2 ویبینارز کراتے ہیں, بہت ساری کانفرنس کراتے ہیں, ای کانفرنس کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ کراتے ہیں جان کے یہ آئیڈیاز ڈبیٹ کرانے میں, کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو جس وقت جس سوسائٹی میں چینج آیا, امریکہ میں جب چینج آیا 1815 to 1830, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اسٹیٹسٹک اکٹھے کیے تھے, امریکہ میں ایسٹ کوسٹ تھے وہ پتہ نہیں کتنے 100,000 talks a month. آپ بتائیں کتنی ٹاکس ہوتی ہیں آپ کی وہاں امریکہ میں؟ ٹھیک ہے, یہاں تو ہم بندے کھینچ کے لاتے ہیں یار, بھیک مانگ کے لاتے ہیں, اور بندے آتے کب ہیں میں آپ کو بتا دوں, کھانے سے پہلے آتے ہیں, کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی خدا کے واسطے حکمران کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکمران دیکھ رہے ہیں, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, منسٹر کو میں بلا لوں تو سارے پہنچ جاتے ہیں, دو ملاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں, سارے منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچریں کھنچواتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں, کنورسیشن کے لیے کوئی نہیں آتا. तो मैं क्या करूँ, मेरे अपने इकोनॉमिस्ट भाई जो थे वो सारे मिनिस्टरों के पीछे भागना चाहते हैं, ठीक है। वेरस मुझे याद है कि जब मैं अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की मीटिंग पर जाता था तो वहाँ मिनिस्टर आते थे सुनने के लिए, और जो उस्ताद थे बड़े बड़े नोबेल प्राइज थे वो मिनिस्टर को लिफ्ट नहीं कराते थे, वो कहते थे वो एक कौन देने। तो आपका मुआशरा चेंज होना पड़ेगा, आप कुर्सी की इज्जत करते हैं, लोगों को ना बातें बनाए, आप चाहते हैं कि आपको पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाए, आप कोई बात ना सोचे ना समझे ना कोई बात बताए, आप बताएं आपके टीवी एंकर कौन सी काम की बात करते हैं, और रोज शो पे क्या होता है आप देखें ना, हमें क्या फिल्म फीड किया जाता है, हमने इसमें मीडिया मार्केट की बात की है, रोज शाम को मैं देखता हूँ भट्टी साहब आते हैं तीन शो पे, ठीक है, वो जनाब एक और बंदा है वो बढ़ाया चाहता है तीन चार शोज पे, हामिद मीर आता है तीन चार शोज पे, फिर हर पॉलिटिशियन मुसद्दक मलिक तीन चार शोज पे आता है, वो साला पीएमएल का कोई आता है, यार ये क्या तमाशा हो रहा है, वी आर बीइंग डम्ब डाउन ऑन अ डेली बेसिस, बट हु केयर्स व्हाट इज द मीडिया मार्केट, हमने मीडिया मार्केट में लिखा हुआ, मीडिया मार्केट आपने क्या बनाई हुई है, आपने हर सेठ को मीडिया भी पकड़ा दिया, देयर इज नो फायरवॉल, यहाँ मैं आपकी बात मानता हूँ ये मार्केट नहीं है, ये आपने जान के सेठों को दे दिया मीडिया, मार्केट अगर बनानी थी जो रूल्स बनाने थे आई वुड हैव मेड द रूल्स कि मीडिया वाला बंदा कोई सॉरी रियल एस्टेट वाला ये जो सेठ है सेठ कोई मीडिया नहीं दे सकता, आई वुड पुट ऑल द मीडिया ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप करो और बताओ कि आपका कौन सी रेटिंग बेहतर आ रही है, आई वुड हैव सेड केबल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करो और केबल इंडस्ट्री को आप बनाओ ताकि वहाँ से रेटिंग मिले,
ठीक ठीक, हर शोबे में इसलाह की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू,
आपने यहाँ
थैंक यू वेरी मच,
हमारे लिए बहुत ही अच्छा इवेंट कराया,
थैंक यू,
और अगर आपकी बातों का लबे लुबाब लिया जाए वो ये कि शऊर इदराक उसी से हमारी बेहतरी हो,
देयर इज नथिंग एल्स,
नथिंग एल्स, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू, थैंक यू.
Thank you for listening. You can watch our podcast on our YouTube channel, Pied Official.